الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آج پیر کا دن ہے، پیر کے دن ہمارے ہاں تصوف سے متعلق جو سوالات ہوتے ہیں ان کی جوابات دیے جاتے ہیں. اللہ کرے کہ صحیح بات اللہ تعالیٰ دل میں ڈالے اور ہم سب کو اس سے فائدہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت جی، اللہ جل شانہ سے آپ کی دنیا اور آخرت میں سرخروئی کے لیے دعا گو ہوں، آمین. حضرت جی، کوئی طبعی بیماری کی وجہ سے کچھ ادویات لے رہا ہوں، کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد دونوں اوقات میں، اور یہ کئی مہینے سے چلتا رہے گا، تو اس وجہ سے نماز چھوٹنے پر روزے والا مجاہدہ نہیں کر پاتا. کیا اس کے متبادل کوئی مجاہدہ کر سکتا ہوں یا ادویات کی پرواہ کے بغیر روزے والا مجاہدہ ہی کروں؟ مجاہدہ بوقت ضرورت کیا جاتا ہے. اصل مجاہدہ تو شریعت والا ہی مجاہدہ ہے، اگر وہ انسان کر لے تو دوسرے مجاہدے کی ضرورت ہی نہ ہو. ہاں جی، مسنون مجاہدات جس کو ہم کہتے ہیں یا شرعی مجاہدات کہتے ہیں. تو آپ نماز قضا ہی نہ کریں، جب نماز قضا نہیں کریں تو آپ کسی اور مجاہدے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں جی، وہ تو نماز چھوٹنے پر مجاہدہ، مطلب وہ جو ہے نا، وہ ہے نا روزے والا مجاہدہ ہے. تو اگر آپ نماز قضا نہیں کریں گے تو پھر آپ کو کیوں روزے رکھنے پڑیں گے؟ ہاں جی، تو مطلب یہ ہے کہ آپ نماز قضا نہ کیا کریں، اسی کو مجاہدہ سمجھیں، تو انشاءاللہ پھر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور اس کے لیے آپ کو انتظامات کرنے پڑیں گے. انتظامات یہ ہے کہ کسی طریقے سے بھی مس نہ ہو پائے، مطلب یہ کئی چیکس. ہم لوگ چونکہ اٹامک انرجی کمیشن میں کام کرتے تھے، تو ہمارا جو ریئیکٹر وغیرہ ہوتا تھا، نیوکلیئر ریئیکٹر، تو اس کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا تھا کہ اس کے اوپر کئی قسم کے وہ سیفٹی چیکس لگے ہوتے ہیں. اگر ایک سیفٹی چیک فیل ہو گیا تو دوسرا، دوسرا فیل ہو گیا تو تیسرا، تیسرا فیل ہو گیا تو چوتھا. مطلب یہ کہ کس طریقے سے بھی کوئی، مطلب جو ہے نا، وہ ڈینجر والی بات جو ہے نا وہ نہ رہے. تو اسی طریقے سے آپ بھی مختلف طریقوں سے الارم وغیرہ یا لوگوں کو بتانا، مختلف جتنے بھی مطلب اس کے وہ ہیں، اس کی اہمیت کو سمجھ کر وہ جو ہے نا مطلب یہ کہ آپ کریں. حضرت ثانی رحمۃ صاحب کو کسی نے خط لکھا کہ حضرت، ابھی تک مجھ سے الارم والی جو ہے، مطلب جو مجبوری ہے، وہ چھوٹتی نہیں ہے. الارم کے لیے مجبور، تاجد کے لیے اٹھنے کے لیے. انہوں نے کہا اگلی دفعہ مجھے خط لکھے کہ ابھی تک میں کانا کانے پہ مجبور ہوں، اب کیا کروں؟ بھائی مجبوری ہے، مجبوریوں کو مان کے آدمی کام کرے. یہ تو نہیں کہ مطلب اپنے بزرگ بننے کی کوشش کر لے کہ بس ٹھیک ہے جی میں بزرگ بن گیا، مجھے کس چیز کی ضرورت نہیں ہے. آج یہ حضرت جو ہے نا، اس چیز کو بہت سخت توڑ کرتے تھے. جو بزرگی کا جو ایلیمنٹ وہ جب آ جاتی ہے نا کسی میں، تو اسی میں بڑے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. بزرگی اور سستی، اس کا علاج حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے خوب کیا ہے دونوں کا، کہ نہ سستی ہونے پائے نہ بزرگی ہونے پائے، ان دونوں کے علاج خوب حضرت کرتے تھے. تو اس میں یہ والی بات ہے کہ سستی بھی نہیں ہونی چاہیے. ہاں جی، اور پھر یہ بزرگی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ بس جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہو. بھائی ہم کمزور لوگ ہیں، کمزور لوگ ہی ہوتے ہیں، تو بس کمزوری اپنے مان لینا. ہم تو کمزوریوں کو مان کر ہم لوگ اس کے لیے کچھ نظام بنا لیں، تاکہ ان کمزوریوں کے ساتھ بھی ہمارا کوئی حکم پر عمل مس نہ ہو سکے. بس یہی مطلب بنیادی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے میں سمجھ کے توفیق عطا فرمائے. حضرت دوسرے سوال کے فیض تو مجھے ذکر کے صورت میں ہی محسوس ہوتا ہے، کیا ایسے ہی فیض محسوس ہوتا ہے، کچھ غلطی ہو رہی ہے؟ اصل میں فیض کے بارے میں پتہ نہیں، پھر وہی والی بات ہوتی ہے نا کہ فیض کو سمجھتے نہیں لوگ. فیض اصل میں یہ ہے، خیر ہے اصل میں، یعنی جو بھی خیر ہمیں پہنچتا ہے وہ فیض ہے. بس میں ڈاکٹر کے پاس ہوں تو ڈاکٹر سے مجھے کیا خیر ملے گا؟ علاج آسان ہوئی تو اس کا فیض یہی ہے. ہاں جی، میں اگر کسی جو ہے نا مطلب ہے کہ اچھے نیک آدمی کے پاس رہتا ہوں تو اس سے نیک اعمال مجھے ٹرانسفر ہوں گے، تو اس کا فیض یہی ہے. ہاں جی، کسی ہوشیار آدمی کے ساتھ رہتا ہوں تو ہوشیار آدمی کے کچھ اچھے مطلب جو کوٹس ہوں گے، جو طریقہ کار ہوں گے سمجھنے کے، تو وہ مجھے منتقل ہوتے رہیں گے، تو یہ بھی اس کا فیض ہے. तो अब जब इस किस्म का फेज हम समझ ले कि इस फेज ये है, क्योंकि बहुत जनरल टर्म है, कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं है कि आप उसको अपने जहन में रखें कि कोई रोशनी आ रही है वो फेज है। ये लोगों के जहन में होता है, कोई कहता है कि पता नहीं मेरा पूरा जिस्म हिल रहा होगा, नहीं है फेज। कोई भी खैर जो आपको किसी से मिल सकती है वो खैर है, और चूंकि सारे खैरों का मंबा अल्लाह जल्ला शानु की ज़ात है, तो सबसे पहले तो ये जहन में होना चाहिए कि अल्लाह तआला की तरफ से फैज़ है, जैसे कि उसकी शान है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़ा वसीला है हमारा, जरिया है, पहला सबसे पहला जरिया हमारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो लिहाजा ये जहन में बैठा। ये असल में हमारे हजरत मुजद्दद अलफ सानी रहमतुल्लाह अलैह ने ये जो मुराक़बात की मतलब जो है ना वो तरतीब बनाई है, ये असल में हजरत ने हमारे कंसेप्ट्स को यानी प्योरीफाई करने के लिए और स्टैंडर्डाइज करने के लिए सारी चीज़ें बनाई है। यानी इसमें अब देखें वो ये मुराक़ब अहदियत है ना, मुराक़ब अहदियत में क्या है, हमारे मतलब जैसे जिस्म के अंदर सेंसिंग पॉइंट्स हैं। अब ये सेंसिंग पॉइंट्स मतलब ठीक है चीज़ आ रही है, लेकिन मैं अब जो है ना खाना में मुँह से ही खाता हूँ ना, तो ये मेरे लिए एक इसका जरिया है, देखता मैं आंखों के जरिए से हूँ, सुनता मैं कानों के जरिए से हूँ, पकड़ता मैं हाथों के जरिए से हूँ। तो हर एक अपना अपना इस तरह लतीफ़े कल्ब इसका अपना रोल है, लतीफ़े रूह का अपना रोल है, लतीफ़े सिर का अपना रोल है, और ये अपने अपने सेंसिंग पॉइंट्स है मुख्तलिफ चीज़ों को मतलब कैच करने के लिए। तो अब हर एक के जरिए से उसके पर्टिकुलर जो फेज है ना वो मुंतकिल होता है उसके जरिए से। तो इसको जो है ना मतलब ये कि हम लोग गए के एक्टिवेट करने के लिए ये मुराकबा अहदियत करते हैं, मुराकबा अहदियत करते हैं। तो ये जो मुराकबा अहदियत है उसमें फेज आता है अल्लाह ताला की तरफ से, जैसे कि उस लतीफ़े के हिसाब से है, जो जो लतीफ़ा जिस चीज़ के लिए बना है उसके हिसाब से आएगा ना, तो वो फेज़ आ रहा है, और उसके असल जो बात है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरिया है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर शेख के दिल पर आते हैं, क्योंकि शेख पर हमारे लिए जरिया है, और शेख से जो है ना मतलब फिर जो है ना वो आता है जो है ना वो इंसान के जो भी लतीफ़ा है उसके ऊपर आता है। इस चीज़ को हमारे मशायख ने इतना ज़्यादा यानी मतलब रासिख किया है लोगों के जहनों में, कहते शेख की मजलिस में बैठो तो लिसानी जिक्र भी ना करो, क्यों? उस वक्त जो आपको असल चीज़ आ रही है, जो अल्लाह जल्ला शानो की तरफ से आ रही है, उसके लिए आप रुकावट बना रहे हैं। वो ये भी नहीं करना चाहिए, उसकी वजह यह है कि उस वक्त जो लिसानी जिक्र है वो मुस्ताबात में है, और जो फेज आ रहा है वो किस चीज़ का आ रहा है, इस्लाह का आ रहा है, इस्लाह फर्ज़ैन है, और फर्ज़ैन कितनी बड़ी चीज़ है, और फर्ज और मुस्ताब का मुकाबला हो तो कैसे होगा। तो ऐसे मतलब जहर ऐसी चीज़ें देखो ना, इन हज़रात ने हमारी ऐसी यानी कंसेप्ट्स क्लियर किए हैं कि मतलब मालूम हो जाए कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ। तो जिसका मुराकबा हदीत पक्का हो गया, तो उसके बाद फिर बारी मशारिफ की है, आज फिर मशारिफ की है, तो मशारिफ फिर उसके ठीक होंगे, क्योंकि यूँ समझ लीजिए कि यानी फेज़ हासिल हो गया ना, फेज़ का एक्सेस हो गया, तो अब फेज़ के साथ आपकी मतलब जो है अलाइनमेंट हो गई। अब इसके बाद हर लतीफ़े का जो फेज़ है उसका आप तसव्वुर करेंगे, तो जो कल्ब का जो फेज़ है वो क्या है, वो फ़ालु लिमा युरीद वाला है। हाँ जी, मतलब ये कि हर चीज़ अल्लाह करता है, हर चीज़ अल्लाह करता है। इस वजह से जिसका कल्ब का लतीफ़ा स्ट्रांग हो और बाकी लतीफ़े स्ट्रांग नहीं हो, तो वो बिल्कुल ही दुनिया से कट जाता है, क्योंकि दुनिया के साथ उसकी कोई मुनासिबत ही नहीं होती, फिर तो दुनिया से कट जाता है। एक तो हमारा है ना कि सिर्फ पड़कने को हम लतीफ़ा कहते हैं, नहीं ये वाली बात नहीं, जो असल जो उसका फेज़ है अगर वो मिलना शुरू हो जाए तो फिर क्या है, फिर इंसान वाकई दुनिया से कट जाता है। उसके लिए फिर लतीफ़ा रूह को स्ट्रांग करना पड़ता है, क्योंकि लतीफ़ा रूह के ज़रिए से इंसान असबाब की दुनिया में आता है, असबाब की दुनिया में आता है। अब ये असबाब की दुनिया के साथ आपकी कनेक्शन ना हो तो बस फिर तो आप यानी यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। हाँ जी, तो ये बाकायदा हर लतीफ़े का अपना फेज़ होता है। तो पहले तीन तरीके हैं, मतलब तीन दौर चलते हैं गोया कि हमारे नक्शबंदी सिलसिले के तीन दौर चलते हैं। पहले दौर में एक्टिवेशन है, हम लोग जिक्र के ज़रिए से हर लतीफ़े को एक्टिवेट करते हैं। हाँ जी, ये एक्टिवेशन हो गया। उसके बाद फिर दोबारा फिर दूसरा दौर इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन टू फेज़ हर लतीफ़े का, जो है मतलब जो है वो हो गया। तीसरे में फिर वो फेज़ मुंतकिल होता है, मतलब ये कि उसके लिए रास्ता बन गया। फिर जो है ना, मतलब आप लतीफ़ा कल्ब का फैज़ हासिल करते हैं, लतीफ़ा रूह का फैज़ हासिल करते हैं, लतीफ़ा सिर का हासिल करते हैं, लतीफ़ा खफ़ी का कर सकते हैं, फिर लतीफ़ा अख्वा का कर सकते हैं, फिर पूरे जिस्म का जिसको हयात वहदानी कहते हैं फिर उसको हासिल करते हैं। हाँ जी, फिर आपका कनेक्शन बनता है मलयाला के साथ, तो फिर वहाँ का हासिल करते हैं। तो मतलब ये कि फिर वो ज़र्ब चलते हैं ना, निज़ाम निज़ाम चलते आगे। तो अब लोगों ने इसको एक समझ लिया, जिसको कहते हैं ना ये क्या होता है, बस एक कोर्स समझ लिया। ये कोर्स नहीं है, ये तो पूरा एक निज़ाम को एक्टिवेट करना है। बस बालू समझते बस ठीक है जी, हमारे इस्बाक पूरे हो गए तो बस ठीक है जी, वो हासिल हो गए। नहीं, अगर उन इस्बाक से वो नतीजा बरामद नहीं हुआ तो आपके इस्बाक ही कच्चे हैं। ठीक है, सिर्फ पूरे हो गए ना, पूरे होने का मतलब क्या है कि मैंने मैट्रिक तक पढ़ लिया तो मैंने मैट्रिक की सारी चीज़ हासिल भी कर ली, मतलब वो तो इसके पीछे पूरे कंसेप्ट हैं। अगर वो कंसेप्ट अगर किसी के नहीं ठीक तो जाहिर मतलब है कि वो कच्चे रहेंगे, फिर उसके बाद उनसे वो फायदे तो नहीं उठा सकेगा। खैर, ये तो साहब की पता नहीं क्या तवज्जो थी कि काफ़ी डिटेल से इस पर बात हो गई। हजरत जी, बंदा कई दिन से जिक्र का तारिक है और खासर है, दिल पर शर गालिब है और खैर का तालिब है, नजर करम फरमाई कि गंदा क्या करे, बंदा आपके लिए दुआ गो होगा। है तो वैसे शायरी। हाँ जी, क्या ख्याल, शायरी नहीं है? है तो शायरी, तो शायरी का जवाब तो शायरी है, लेकिन फायदा क्या होगा? मतलब जाहिर, अगर मैं भी जवाब में शायरी कर लूँ तो फिर इसके क्या फ़ायदा होगा? हकीकत की दुनिया में आना चाहिए ना, हकीकत की दुनिया में आना चाहिए। वो असल में बात यह है कि इसमें क्या बात है, एक एक करके लेते हैं। कई दिन से जिक्र का तारिक है, पहला सवाल, क्या जिक्र करना इख्तियारी अमल है या गैर इख्तियारी अमल है? इख्तियारी अमल है ना, इख्तियारी का नुकसान का इलाज इख्तियारी होता है या गैर इख्तियारी होता है? तो फिर इख्तियारी क्यों नहीं करता, अपने इख्तियार से काम लेते हुए जिक्र शुरू करें, किसने रोका उसको? किसने रोका तो नहीं है। अब जिक्र नहीं कर रहा तो आप करना शुरू कर लें, जैसे नहीं कर रहे अपने इख्तियार से इस तरह करना शुरू कर ले अपने इख्तियार से। अब किसी के सामने काना पड़ा हो और वो नहीं कर रहा हो तो उसको क्या करेंगे, उसके साथ हम क्या करें, उसके पाँव पड़ जाए मेहरबानी करके आप गाने गाएं, क्या करें उसके साथ? हाँ जी, बस ठीक है। जो अगर वो होशमंद है और समझदार है तो होश होश से काम ले ले, अपने फ़ायदे नुकसान को जान ले। तो जिक्र एक ज़रिया है, यहाँ पर ये इलाजी जिक्र जो होता है ये ज़रिया है, और ज़रिया कोई इस्तेमाल न करे और नतीजा कोई चाहे तो ऐसे लोगों को बेवकूफ़ कहा जाता है। क्यों, गलत कह रहा हूँ? ये जो जरिए को इस्तेमाल न करो, कहे कि मुझे नतीजा हासिल होते, उसको बेवकूफ़ नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ऐसे लोग को बेवकूफ़ कहा जाता है। तो बेवकूफ़ आदमी क्यों करे, जिक्र करना शुरू कर ले, यही तरीका है। खासर है, खासर है उसका मतलब अंजाम का, उसको पता है कि जो जिक्र नहीं करेगा वो हासिर होगा, तो उससे बचना जो है वो लाजिम होगा। हाँ जी, मतलब वो लाजिम होगा। कद अफलाह मन जक्का वकद खाबा मन दस्सा, तो जो छोड़ देता है अपनी इसलाह तो उसका मतलब खैब खासिर होगा। तो उसके लिए फिर क्या है, इलाज क्या है? कद अफलाह मन जक्का है, यानी वो अपने नफ्स का वो जो है ना वो कर ले, तजकिया कर ले, तो माशाल्लाह ठीक हो जाएगा, खसारे से बच जाएगा। तो खसारे से बचना चाहिए, दिल पे शर गालिब है और खैर का तालिब है। तो जिस चीज़ का तालिब है उसको हासिल कर लो, और जिस चीज़ का खौफ है उसे अपने आप को बचाओ। और वो बचाने का क्या है कि ऐसे ऐसे लोगों के सोबत से बचो और ऐसे जगहों की सोबत से बचो, जिस जगहों की तरफ न जाओ जहाँ इशारा हो, और ऐसे जगहों के करीब हो जाओ जहाँ खैर हो, उसे ऐसे लोग के करीब हो जाओ जहाँ खैर हो। वैसे ही मतलब हो सकता है ना, और क्या हो सकता है। ठीक है, नज़र करम फरमाइए कि गंदा क्या करे। तो नज़र करम का तो यहाँ तक मैं अक्सर कहा करता हूँ कि ये शायरी है ना, ये इसमें सही बात यह है कि शेख का काम इतना ही होता है कि वो किसी को सही रास्ता बताए। मिसाल के तौर पर हम चौराहे पे कंफ्यूज हो जाएं कि इस तरफ जाने, इस तरफ जाने, इस तरफ जाने, तो जिस आदमी से हमने पूछा और वो आदमी होशियार भी हो, समझदार भी हो, और वो आपको रास्ता बताए, फिर भी आप उस रास्ते पे न चले तो फिर क्या करे वो? वो आपके साथ गाड़ी में बैठ के आपको तो नहीं ले जाएगा, ले जाएगा ना? आपको रास्ता बता दिया, उस रास्ते पे चलना अब आपका काम है। हाँ जी, मतलब ये है कि हजरत ने फरमाया था, रंग खुद तुझ में है वरना रास्ता हमवार है, तू ही हिम्मत हार है, तू ही हिम्मत हार है। मजदूर रहमतुल्लाह फरमाते ना, मतलब ये कि सारी चीज़ें मौजूद हैं, रास्ता भी मौजूद है आपके साथ, वसाइल भी मौजूद हैं, इन वसाइल से काम लेते हो, इसी रास्ते पे चलो तो काम हो जाएगा इंशाल्लाह। बहरहाल अल्लाह ताला आपको तौफीक अता फरमा दे, और मैं भी आपके लिए दुआगो हूँ, अल्लाह ताला हम सबको सही बातें समझने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम, मेरा नाम फलाह है, डी खान से। मेरा जिक्र मुकम्मल हो गया जो कि 30 दिन है, जी 30 दिन का था जिक्र। 100 मरतबा अल्लाह अल्लाह, 1000 मरतबा अल्लाह अल्लाह पढ़ना था। इसके बाद 5 मिनट मुराकबा के दौरान दिल में तसव्वुर करना था कि मेरे दिल अल्लाह अल्लाह कर रहा है। दिल को अभी तक कुछ भी महसूस नहीं हुआ, जब ज़्यादा कोशिश करता हूँ तो आंखों में दर्द होता है, और जब सांस बंद करती हूँ तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। अब थोड़ा सा इसका एनालिसिस करते हैं। जिक्र 1000 मरतबा अल्लाह 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 जो मैंने अर्ज़ किया है, वो असल में अपने दिल को गोया के मानूस करना है। जैसे मिसाल के तौर पर कोई पहले वक्तों में ये जो गाड़ियाँ होती थी ना, शेवरलेट गाड़ियाँ किस तरह, उसका एक हैंडल होता था। हाँ जी, वो हैंडल उसमें देखे ना, तो उसको आजकल भी मेरे ख्याल में वो मोटरसाइकिल का तो यही थ्योरी है ना, वो जो मारते हैं पहले तो इससे वो स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो स्टार्ट हो जाते हैं, फिर बैठ के फिर चलना शुरू कर लेते हैं। तो गोया कि अपने दिल को जिक्र का मानूस करने के लिए आपको जिक्र गोया लसानी जिक्र कराया। अब लसानी जिक्र कराने के बाद आपका दिल जब इसके साथ मानूस हो गया, तो फिर उसको 5 मिनट के लिए छोड़ो कि खुद करे, उसको सिर्फ सुनो। तो इस ज़रिए से इंशाल्लाह जल्दी मकसूद तक रसाई हो जाएगी। अगर जल्दी जल्दी आप अल्लाह अल्लाह कर सकेंगी तो इसमें और ज़्यादा जल्दी का इम्कान है। अलबत्ता अगर फिर भी नहीं होता तो फिर हफ्ज़ दम के ज़रिए से मतलब करते हैं तो उससे फ़ायदा होता है। हमारे शेख ने हमें तरीका बताया था कि 11 मरतबा से शुरू कर लो हफ्ज़ दम, अल्लाह 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 अल्लाह, हाँ जी, एक सांस में, फिर रोज़ एक एक बढ़ाते जाएं, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, एक सांस में, हाँ जी। तो ज़ाहिर है जब एक सांस में आप करेंगे तो आखिर में काफ़ी ज़्यादा तादाद हो जाती है, काफ़ी जल्दी जल्दी इंसान पढ़ता है, उसी से माशाल्लाह ट्रिगर हो जाता है। हाँ जी, तो ये तरीका मैंने आपको इसलिए बताया था। तो अब इसके बाद कोई कैफियत मतलब नहीं है, मतलब कोई महसूस नहीं है तो कोई बात नहीं। बाद लोग को ज़्यादा टाइम लग जाता है, बाद को कम टाइम लग जाता है, मर्दों को ज़्यादा टाइम लगता है, औरतों को कम टाइम लगता है। लेकिन कुछ औरतों पे ख्यालात का गलबा ज़्यादा होता है, एक सुई कम होती है, उनको टाइम इस तरह मर्दों की तरह ज़्यादा लगता है। और बाज़ का यकसुई नस्बतन ज़्यादा होती है, तो उनको जल्दी हो जाता है। लेकिन आप हिम्मत ना हारें, और आंखों में आपका दर्द होता, मुझे नहीं मालूम कि आंखों का इसके साथ क्या ताल्लुक है। हाँ जी, मतलब यह है कि आप कोशिश करती हैं तो आंखों में दर्द हो जाए, इसका मतलब कुछ जोर लगाना चाहती हो। तो मैंने जोर लगाने का तो कहा ही नहीं है, मैंने सिर्फ ये कहा है कि आप सुनने की कोशिश कर ले। और ये वाकईतन जो लोग करते हैं ना, मतलब एग्जर्ट करते हैं उसमें, तो उनको तकलीफ हो सकती है। तो एग्जर्ट करने का तो कहा ही नहीं है। इसकी तो मिसाल ऐसी है जैसे कि कई किस्म की आवाज़ें हों, उनमें सिर्फ आप अपने मतलब की आवाज़ सुनना चाहते हों, कि कोई आपको पुकार रहा हो और इधर उधर नाइस हो, उस नाइस में आप जो है ना, मतलब यह है कि वो उसकी आवाज़ सुनने की कोशिश करते, उसमें जो तवज्जो होती है बस वही तवज्जो चाहिए उसमें भी इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ जी, तो अगर आप सिर्फ आप इतना ही करती है तो फिर कोई मसला नहीं इंशाल्लाह। बाकी ये है कि सांस फिलहाल न बंद करें, फिलहाल यही करें, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर बता दूंगा इंशाल्लाह।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह हज़रत, मैं मोहम्मद असद अंसारी बर्मिंगम यूके से बोल रहा हूँ, और इंशाल्लाह दुआ है कि आप खैर में हैं और आपका लाहौर का प्रोग्राम इंशाल्लाह अच्छा जा रहा है, और दुआ है कि पाकिस्तान की हिफाजत के लिए इस वक्त में। मगर मेरा सवाल आज के लिए था ज़िक्र के आदाब के बारे में। तो आपने पिछले हफ्ते के सवाल व जवाब में कुछ बात इसमें शुरू की थी, तो मैं चाह रहा था कि अगर आप इस पे ज़रा और बता सकें कि ज़िक्र के आदाब क्या हैं, कि अगर आपने कहा है दिन में एक दफ़ा कुछ चीज़ पढ़नी हो तो क्या दिन में बेहतर है या रात में बेहतर है?
एक एक करके मेरे ख्याल में जवाब दे तो शायद, एक एक करके अगर जवाब दे तो शायद ज़्यादा बेहतर हो। तो ये बात है कि प्रायोरिटी अगर हम देखें तो सबसे पहले तो तहज्जुद के वक़्त को है। तहज्जुद के वक़्त इंसान बड़ा फ्रेश होता है, तबीयत ताज़ा होती है, यकसुई ज़्यादा होती है। इस वजह से अगर जिक्र उस वक़्त किया जाए तहज्जुद के बाद तो ज़्यादा फ़ायदे का सबब है। इसके बाद फिर फजर की नमाज के बाद अगर कोई और काम ना हो, फिर उसके बाद मतलब जो है ना वो आप कह सकते हैं कि असर की नमाज के बाद है, क्योंकि असर की नमाज के बाद चूंकि वो नहीं है ना, नवाफिल नहीं है, हाँ जी, और सुन्नतें भी नहीं है, तो ये गोया कि इस वक्त को ख़ास रखा गया है जिक्र के लिए। तो इसके बाद फिर ये है, उसके बाद फिर अगर भी नहीं है तो चूंकि लोग फारिग हो जाते हैं अक्सर मगरब के वक्त तक, तो मगरब के बाद पर है। सबसे निकम्मा वक़्त ईशा के बाद का है। हाँ जी, क्योंकि ईशा के बाद इंसान थका होता है दिन भर के कामों में। हमारे तबलीगी जमात वाले जो हज़रात हैं ना, वो उनको ज़्यादा नुकसान इसी वजह से होता है जिक्र न करने का, कि वो अक्सर हमारे तबलीग अबू के बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि जिस वक़्त ये थक हार के सारी चीज़ों से फारग हो जाए तो बिस्तर पर बैठ कर जिक्र करते हैं, तो गोया कि नींद की नीयत करके जिक्र करते हैं। तो ज़ाहिर उनको नींद आ जाती, सो जाते हैं, फिर कहते हैं जी जिक्र नहीं हो सका जी, बिल्कुल क्या करें जी, बस नींद आ गई। तो आपने नींद की नीयत कर ली तो अब इसके बाद फिर क्या क्या हो सकता है? फिर तो यही होगा, हम जब जमात में चलते थे तो वो जो है ना इस तरह ये घुटने कड़े करके जो है ना जैस वक़्त वो हम वो करते थे ना इस तरह, तो हमें अमीर साहब रोकते थे कि इसका मतलब आपने सोने की नीयत कर ली, आपने बयान सुन वो तालीम सुनने की नीयत नहीं की है, आप अत्तहियात की शक्ल में बैठ जाएँ। हाँ जी, तो इसी तरीके से मतलब यह है कि अपने आप को काबू करना होगा, यानी जिक्र के लिए आपको काबू करना होगा, रिलैक्स्ड मोड में ना रहें बल्कि एक्टिव मोड में रहें। हाँ जी, हमारे आर्मी के जुबान में टेंशन रहें, स्टैंडर्ड इज ना रहे, हमारे लिए वरना फिर जो है ना मसला हो जाएगा, फिर वो इसी तरह रहेगा। तो ये आप एक तो ये करें कि फ्रेश टाइम गेन करें, उसमें ज़्यादा फायदा होगा।
कि अगर आपने कहा है दिन में एक, तो मैं चाह रहा था कि अगर आप इस पे ज़रा ज़्यादा और बता सकें कि जिक्र के आदाब क्या हैं, कि अगर आपने कहा है दिन में एक दफ़ा कुछ चीज़ पढ़नी हो तो क्या दिन में बेहतर है या रात में बेहतर है, या किसी नमाज के बाद बेहतर है, फजर के, असर, मगरिब, इशा के बाद बेहतर वक्त होता है। दूसरी बात कि अगर जिक्र के दौरान एक ब्रेक लेना पड़े या कोई काम आ जाए तो ये क्या बुरी बात है कि आपने जिक्र के वक्त ब्रेक लिया है, या और एक ही दफ़ा पूरा मुकम्मल होने चाहिए एक ही दफ़ा में? और
इसमें जो बुनियादी बात है वो ये है कि आप इसके लिए टाइम ऐसा चूज़ कर ले कि आपको तजुर्बे से आपको मालूम हो कि उसमें ब्रेक नहीं करना पड़े, क्योंकि ब्रेक से भी बरकत ही तो होती है, इसमें तो कोई शक नहीं। क्योंकि ज़्यादा मतलब वो जो जिसमें एक सुई का एलिमेंट है वो तो डिस्टर्ब हो गया ना, यानी ये तो हम कह सकते हैं कि एक सुई का एलिमेंट डिस्टर्ब हो गया, तो ब्रेक आप लेंगे तो वो नुकसान तो होगा। तो इस वजह से पहले से कैलकुलेट कर लें कि कौन सा टाइम मेरा ऐसा होगा जिसमें ब्रेक नहीं लेनी पड़ेगी। तो फिर इसके बावजूद भी अगर उससे अहम काम आ गया तो फिर तो अब आखिर ऑप्शन तो फिर वही लेंगे आप कि वो अहम काम पहले करेंगे बाद में जिक्र पूरा करेंगे, लेकिन नुकसान तो आपको यकीनन होगा। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मजबूरन आपको एक काम करना पड़ता है लेकिन आप उसके नुकसान को बर्दाश्त करते हैं, फिर मतलब बर्दाश्त तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि ज़ाहिर मतलब असबाब की दुनिया है ना, तो असबाब की दुनिया में जो है ना वो ठीक है, आपको जो है ना प्रायोरिटी वाइज उसको कैच करना पड़ेगा जो ज़्यादा अहम है। अब मिसाल के तौर पर मैंने नमाज ऐसे वक्त जिक्र ऐसे वक्त शुरू किया कि दरमियान में नमाज का वक्त आता है, तो क्या मैं आपको कह सकता हूँ कि नमाज को छोड़ो जिक्र को मुकम्मल करो? मैं कहूँगा नमाज पहले पढ़ो, नहीं, क्योंकि नमाज फ़र्ज़ है और या जुमात के साथ जो नमाज करीब वाजिब है। तो ऐसी सूरत में मैं आपको कहूँगा नमाज, लेकिन जो एक सुई डिस्टर्ब हो गई तो उससे आपके जिक्र को नुकसान तो होगा, मतलब उसकी नमाज की अहमियत की वजह से आप उस नुकसान को ख़त्म नहीं कर सकते। अलबत्त ये वाली बात है कि अगर आपको ये चीज़ मालूम है तो आप जिक्र ऐसे वक्त में शुरू क्यों करते हैं? उसके लिए आपको ऐसा वक्त मतलब चूज़ करना चाहिए जिसमें ये नुकसान ना हो। हाँ जी,
अगर जिक्र के दौरान एक ब्रेक लेना पड़े या कोई काम आ जाए तो ये क्या बुरी बात है कि आपने जिक्र के वक्त ब्रेक लिया है, या और एक ही दफ़ा पूरा मुकम्मल होने चाहिए एक ही दफ़ा में? और दूसरी बात कि जिक्र जो है वो सिर्फ बैठे हुए होने चाहिए, लेटे हुए भी हो सकता है, या खड़े हुए, या बैठे हुए भी हैं तो कुर्सी में ठीक है, या फ्लोर पे बैठने चाहिए? और दूसरी बात यह है कि
अच्छा, ये जहाँ तक ये वाली बात आपने फरमा, एक नसीहत करूँगा कि आइंदा इस तरह कई सवालात एक सवाल में न भेजा करें, क्योंकि इससे मुझे बड़ी बड़ी उलझन पेश आ रही है कि मैं जो करता हूँ तो दरमियान में डिस्टर्ब हो जाता है। मैं अगर आपको डायरेक्ट नहीं सुनाता तो वो भी मसला हो जाता है, और डायरेक्ट सुनाता हूँ तो फिर उसमें जो है मतलब वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि वो ज़ाहिर सिस्टम के अपने कुछ मसाइल तो होते हैं ना। तो एक मतलब जो है ना वो एक वक्त में एक सवाल किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है ताकि उसका जवाब दिया जा सके, मुनंदे के लिए इस बात का ख्याल रखा करें। वैसे भी हमारे हजरात जो है ना वो मौलाना अशरफ सार मतलब जो हमारे शेख थे वो ख़त के बारे में कहते हैं कि एक ख़त में कई बातें ना पूछें, वो जो मुख्तसर ख़त लिखे बेशक कई खतूत लिखे एक ये बात दी करें, लेकिन ये बात है कि एक वक्त में सारी बातें ना करें वरना फिर तो किताब लिखनी पड़ेगी। तो उससे फिर जो है ना मतलब ये है कि वो जो है ना वो कहते हैं हज़रत डॉक्टर शेर हसन साहब ने मुझे ये बात समझाई थी, जो हमारे सीनियर पीर भाई थे, कहते हैं इससे शेख के दिल पे तकद्दुर आता है और तकद्दुर से मुरीद को नुकसान होता है। مطلب جب اس قسم کی بات صورت حال ہوتی ہے تو اس سے نقصان ہوتا ہے، لہٰذا آئندہ اس قسم کی بات نہ کرے جس سے جو مطلب ہے کہ اس قسم کے مسائل ہو. تین دفعہ دیکھو میں نے شروع کیا تو تین دفعہ وہ ڈسٹرب ہو گیا، وہ درمیان درمیان میں اوور لیپنگ والی بات شروع ہو جائے گی. تو بہرحال اب یہ کیا تھا آخر میں کیا با... ہاں نہیں، بیٹھنے کے جو آداب ہیں، دیکھیں میں نے عرض کیا نا کہ ایک سوئی والی بات ہے. اگر آپ صرف ثواب ہی ذکر کرتے تو اس کے لیے کوئی پابندی نہیں، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں، آپ کھڑے ہو کے کرے، بیٹھے ہوئے کرے، لیٹے ہوئے کرے، بلکہ تینوں کا باقاعدہ ذکر بھی آیا قرآن میں. ہاں جی، اللہ جی اسکرون اللہ قیام و قعود و علی جنوبہم. ہاں جی، مطلب تینوں کا ذکر آیا ہوا ہے. تو بہر لیکن جو علاجی ذکر ہے، علاجی ذکر کا اپنا ایک فارمیٹ ہوتا ہے جس میں وہ علاج مقصود ہوتا ہے. تو علاج کا یہ والی بات ہے کہ اس میں آپ بیٹھ کر قبلہ رخ توجہ کے ساتھ ذکر کو کریں، مطلب یہ کہ اس میں وہ والی بات نہ ہو کہ جیسے بعض لوگ گاڑی میں بیٹھے چل بیٹھے بیٹھے چلتے چلتے، نہیں، اس سے آپ کی یکسوئی کبھی بھی اس فارم پہ نہیں جائے گی جس سے آپ کو وہ مطلوبہ کیفیت حاصل ہو جائے. لہٰذا اس میں آپ کو بیٹھ کے توجہ کے ساتھ قبل رخ بیٹھ کے باوضو بھی، یہ نہیں کہ مطلب وضو کے بغیر ذکر نہیں ہو سکتا، یہ تو اس کو فقہی مسئلہ نہ بنایا جائے. ہاں جی، ذکر بغیر وضو کے بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ ثواب کے لحاظ سے. جو علاج کے لحاظ سے تو علاج جس طریقے سے زیادہ بہتر ہوگا تو وہی آپ کریں گے نا. تو علاج کے لیے چونکہ ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے، کیونکہ اس یہ سب چیزیں ایک سوئی پہ اثر ڈالتی ہیں، تو اس وجہ سے اب جیسے حضرت فرماتے ہیں حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک سوئی ہو چاہے پاس ایک سوئی بھی نہ ہو، یعنی ایک سوئی اتنے زیادہ ہم ہیں، تو اب جو ایک سوئی والی ڈسٹرب کرنے والی چیزیں ہوں گی اس سے تو نقصان ہوگا. تو لہٰذا علاجی ذکر جب کریں گے تو اس میں تمام چیزیں خیال میں رکھنی ہوگی تاکہ آپ کو اس کا فائدہ ہو. ہاں، اگر آپ نے اس کی تمام چیزوں کو خیال میں نہیں رکھا، مثال کے طور پر چلتے چلتے کیا، تو ذکر آپ کا ہو جائے گا لیکن اس سے فائدے میں جو کمی ہوگی اس کے ذمہ دار تو آپ ہوں گے، فائدے میں کمی ہوگی.
تو کرسی میں ٹھیک ہے یا فلور پہ بیٹھنے چاہیے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ذکر جو ہے وہ اکیلے میں بہتر ہے، کم بند کمرے میں، یا آپ باہر کہیں ہوں تو وہاں پہ بھی ٹھیک ہے. اور دوسری بات ہے کہ آواز کتنی نکلنے چاہیے، کہ وہ صرف اتنی آواز نکلنے چاہیے ذکر کی کہ صرف آپ سن سکیں، یا اگر کوئی آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہو اس کو بھی آواز آ سکے.
ذکر کی کئی صورتیں ہیں، جو بتایا گیا ہوتا ہے اسی کے مطابق کرنا چاہیے. بس اگر آپ مراقبہ کرتے ہیں تو اس میں توازن ہوتا ہی نہیں ہے. ہاں جی، لیکن اگر آپ ذکر جہری کرتے ہیں تو اس میں تو آواز ہوگا. اگر ذکر لسانی کر رہے ہیں تو اس میں آواز نہیں ہوگا لیکن زبان تو ہل رہی ہوگی. ہاں جی، یعنی جو فارمیٹ ذکر کا آپ کو بتایا گیا ہے وہی اسی فارمیٹ کو اختیار کرنا چاہیے. تو اس کا فارمیٹ یہی ہے کہ آپ جو ذکر جہری ہے وہ ذکر جہری کو جو ہے نا وہ آپ مطلب جو ہے نا وہ دیکھیے وہ یہ میں بھول گیا یہ پھر وہ اس کو سائڈ کرنا. تو آپ اس طرح کر لیں کہ جو فارمیٹ آپ کو بتایا گیا ہوتا ہے وہ فارمیٹ خیال میں رکھیں، وہ فارمیٹ خیال میں رکھیں. اور یہ کہ مثال کے طور پر آپ کو ذکر کا جو طریقہ، جیسے ذکر جہری ہوگا تو جہری کرنا پڑے گا، اور جہری میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ خود بھی سنتے اور دوسرا بھی اس کو سنتا ہے. ہاں، جگہ آپ ایسے منتخب کریں کسی کو تکلیف نہ ہو، مطلب کوئی پڑھ رہا ہے تو کم از کم اس کے پڑھنے میں مسئلہ نہ ہو، کوئی سو رہا ہو تو اس کے سونے میں مسئلہ نہ ہو. جگہ آپ ایسی منتخب کر لیں کہ اس میں کسی اور کو پرابلم نہ ہو، وقت آپ ایسے منتخب کر لیں کسی اور کو پرابلم نہ ہو. لیکن جہر کے اندر جہر و ضرب کا اپنا ایک فائدہ ہے، اس سے جو ہے انسان الرٹ رہتا ہے، باقی تمام ماحول سے کٹ جاتا ہے، یکسوئی حاصل ہو جاتی ہے. تو یہ جو ہے نا مطلب اسی مقصد کے لیے اس کو زہر جو جہر و ضرب ہے وہ لگایا جاتا ہے. باقی یہ ہے کہ اصل چیز تو وہی ہے کہ وہ چیز جو اثر اس میں آنا چاہیے وہ اثر اس میں آ جائے. تو چونکہ تجربہ بزرگوں کا یہ ہے کہ یہ اثر اس طریقے سے آئے گا تو اسی طریقے سے کرنا چاہیے جس طریقے سے بتایا گیا ہے.
آپ سن سکیں، یا اگر کوئی آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہو اس کو بھی آواز آ سکتی ہے یا نہیں. اور اگر آپ گاڑی چلا رہے ہوں کسی لمبی جرنی میں، सिर्फ बैठे हुए नहीं गाड़ी में, मगर खुद चला रहे हों गाड़ी तो उस वक्त भी कर सकते हैं या नहीं, और अगर अलग अलग अधिकार में कुछ फ़र्क हो तो अगर ये इस पे आप थोड़ा सा बता सकें तो बहुत शुक्रिया. जज़ाकल्लाह खैर. अस्सलामु अलैकुम.
हाँ, बाकी चीज़ें तो मेरे ख्याल में मैं अर्ज़ कर ही चुका हूँ। बाकी जो गाड़ी चलाने वाली जो बात है, ख़ुद गाड़ी चला रहा हो तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल ना करें उस वक्त जिक्र, क्योंकि सेहत और क्या जिसको कहते हैं जान सबसे ज़्यादा अहम है, तो अगर जान चली जाए तो फिर क्या होगा। हाँ जी, मतलब ज़ाहिर वो कहते हैं कि एक दफ़ा कोई बहुत स्पीड से गाड़ी चला रहा था तो अपने कैमरे से जो ना स्पीडोमीटर भी दिखा रहा था अपने दोस्तों को, तो सारी चीज़ें उसको उनको नज़र आ रही थी, तो बस उनको फिर वो भी नज़र आ गया कि वो दरख्त के ऊपर जाना चला गया और गाड़ी धोलख्त हो गया। वो आखिर वक़्त तक लोगों को नज़र आ गया कि क्या हुआ। तो मतलब यह है कि ये ज़ारे जान बड़ी अजीज़ है और उसको जो है ना ख़ुदकुशी की तरफ तो नहीं जाना चाहिए। तो गाड़ी चलते हुए तो जिक्र बिल्कुल इलाजी तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, अलबत्त सवाबी अगर आप कर सकते हैं और वो भी इस तरीके का आपको उसमें कोई मसला ना हो, तो फिर ठीक है। अगर उससे भी मसला हो तो फिर वो भी ना करें। हाँ जी, क्योंकि ज़ाहिर मतलब उसमें गाड़ी के लिए जो एक सुई की ज़रूरत है वो कम अज़ कम होनी चाहिए। हाँ जी, आपकी एक सुई इतनी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए कि उसकी वजह से आपको जो है ना वो बहुत सारे मसाइल आजकल मोबाइल की वजह से हो रहे हैं। ये मोबाइल जो लोग कान से लगा लेते हैं और गाड़ी भी चला लेते हैं तो एक्सीडेंट्स तो ऐसे होते हैं। हाँ जी, बहुत सारे एक्सीडेंट्स ऐसे हुए हैं। तो ये चीज़ें जो है जहन मतलब अकेले के बाकायदा फ़लसफे का कानून है कि वो कहते हैं कि ख्याल एक वक्त में दो चीज़ों की तरफ नहीं हो सकती, तो अगर एक तरफ है तो दूसरी तरफ नहीं होगी। तो इस वजह से जो है ना मतलब कभी भी इस किस्म की है बात नहीं करनी चाहिए। आइंदे के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप टेक्स्ट में जो है ना वो लिखा करें। टेक्स्ट में इंसान के पास सामरी चीज़ें होती है तो उसमें जितने का जवाब दे रहा है बाकी का उसका पता होता है कि बाकी मैंने क्या करना है। तो इस तरह साउंड में जो ऑडियो वाले फॉर्म में, तो उसमें सिर्फ एक चीज़ अगर आप बताना चाहें तो बता दें, कई चीज़ें ऑडियो में ना लाएं, क्योंकि इससे फिर वो जो है ना वही मसला हो जाता है कि जवाब देना मुश्किल हो जाता है। अब मैं अगर सारा सुन लेता तो मुझे पूरा याद नहीं रहता, तो फिर कुछ चीज़ रह जाती, और अब सुन सुन के कर रहा हूँ तो इतने ये मसाइल हैं। तो फिर या तो टेक्स्ट फॉर्म में भेजा करे या फिर एक एक चीज़ करके जो है भेजा करे, तो इंशाल्लाह उससे भी ज़्यादा फायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम हज़रत जी, मैं फ़लाँ हूँ। हज़रत जी, लताइफ़ के ज़िक्र को 1 माह हो गया था। पहले मेरा ज़िक्र 15 मिनट कल्ब का और 10 मिनट रूह का था, अब ने तब्दील करके 10 मिनट कल्ब, 10 मिनट रूह और 10-15 मिनट सिर का फरमाया। हज़रत जी, उस माह में महसूस हो कि कल्ब का ज़िक्र बहुत कम हो गया, किसी किसी दिन महसूस भी नहीं हुआ। रूह का ज़िक्र उसकी नस्बत बेहतर महसूस होता है, और जो सिर के लिए पर शुरू किया वो भी अभी बहुत कम कम होता है। आगे के लिए रहनुमाई फरमा दीजिए। बिल्कुल नेचुरल है, चूँकि आप पहले कल्ब का कर रही थी और कल्ब का जो टाइम आप दे रही थी उसकी वजह से वो एक्टिव था। अब आपने कल्ब के साथ एक और लतीफ़ा भी शुरू किया, तो इसको साथ मेंटेन इसलिए रखते हैं क्योंकि हर पहला जो लतीफ़ा है वो अगले लतीफ़े के लिए बुनियाद होता है। इस वजह से हमारे जो चिश्ती हज़रात हैं वो सिर्फ़ एक लतीफ़े के कायल हैं, वो बाकी लतीफ़ के कायल नहीं हैं। वो कहते हैं असल में ये डेप्थ की बात है, एक ही लतीफ़े के डेप्थ की बात है। यानी अगर आप जैसे पंपिंग हम करते हैं ना, साइकिल को जो पंप हवा भरते हैं, तो अगर कम जोर देते हैं तो हवा मतलब ये कि वो थोड़ी जाएगी, और अगर ज़्यादा जोर देते हैं तो और ज़्यादा हवा जाएगी, और ज़्यादा जोर देंगे तो और। तो इसमें ये वाले, या पानी जब हम फेंकते हैं तो अगर जितना जितना जोर ज़्यादा देंगे तो दूर तक पानी जाएगा। तो ये असल में जो डिस्टेंस वाइज वो मुख्तलिफ लताइफ की जो सेंसेशन है वो हो रही होती है, चीज़ वही होती है। तो इसका मतलब है कि कल्ब का हम लोग मेंटेन इसलिए करते हैं कि ऐसा ना हो कि वो कल्ब वाली बुनियाद ख़त्म हो जाए तो फिर वो पीछे वो भी नहीं रहेगा। तो आप कल्ब का जारी रखेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह अज़ीज़ फिर ये मसला नहीं होगा, आप मेंटेन रखें तो ये भी ठीक होगा। रूह का जिक्र चूँकि लेटेस्ट है तो इस वजह से नस्बतन बेहतर है, और जो सिर का है वो अभी चूँकि आपने शुरू किया, उसमें अभी आपकी आपकी वो नहीं हुई, एक्सपीरियंस नहीं हुआ, तो वो भी कमज़ोर है। تو یہ تینوں باتیں نیچرل ہے، اس وجہ سے آپ جاری رکھیں، میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، انشاءاللہ آگے بہتر ہو جائے گا. حضرت جی ایک بات میں نے محسوس کی کہ ویسے اگر کبھی گناہ ہو جائے باوجود بچنے کے تو توبہ ضرور کر لیتی ہوں، لیکن سے کل بھی ذکر پر بہت فرق نہیں پڑتا. دیکھیں آبزرویشن، دیکھیں آبزر، بہت فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر نفس کی بری خواہشات سے نہ بچ سکوں، ہاں جی، جیسے غیر اختیاری برے خیالات آنے لگ جائے تو کب میں ان کو خود لانا شروع کر دوں مجھے پتہ نہیں لگتا. میں نفس کو کنٹرول بھی کرتی رہوں، اسے لڑتی بھی رہتی ہوں گناہ سے، لیکن پھر بھی کبھی کبھی نہیں بچا پاتی. پھر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ذکر میں ریورس ہونے لگ گئی ہوں، یا ذکر پہ اس کا فرق پڑ گیا. ایگزیکٹلی اس نے وہی کہا ہے جو ہونا چاہیے، کہ نفس دل کے کام کو خراب کر دیتا ہے. جو دل نے گین کیا ہوتا ہے وہ نفس اس کو ریورس لگا دیتا ہے. ہاں جی، کیونکہ دل کا ذکر جو ہے نا دل کا علاج ہے نا، تو وہ تو دل کے ساتھ تو اٹھی ہوئی ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ علاج ہی وہی ہے، تو اس کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن نفس کا جو ہے ڈائریکٹ دل کے اوپر اثر پڑتا ہے، تو پھر اس میں کمزوری آ جاتی ہے. ہاں جی، تو یہ والی بات ہے کہ نفس جو ہے نا اگر اس کا خیال نہ رکھا جائے تو دل واپس ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ والی بات. باقی یہ کہ آپ نے جو یہ فرمایا کہ گناہ ہو جائے تو توبہ کر لیتی ہوں، اس سے کل بھی ذکر پہ فرق نہیں پڑتا. تو دل اگر گندا ہوتا ہے تو اس کا علاج ہی ذکر ہے، لہذا وہ تو اس کے ساتھ عادی ہے، تو اس پہ کوئی مسئلہ نہیں پڑتا. لیکن نفس کی وجہ سے جو آتا ہے اس سے واقعی دل کو ڈائریکٹ نقصان ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی صلاحیت جو گین کی ہوتی ہے وہ لوز ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ میرے خیال میں بات آپ نے کئی بار ہم سے سنی ہوگی، کہ اگر آپ پورا ہفتہ ذکر کریں اور 5 منٹ ٹی وی کے سامنے بیٹھ جائے تو آپ کی ساری چیزیں سوئچ آف کر سکتے ہیں، جو گین کیا ہوتا ہے وہ سارے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، مطلب کیونکہ وہ جو اس کا اثر جو دل پہ پڑے گا، کیونکہ آنکھ کے ذریعے سے کان کے ذریعے سے وہ فسق و فجور والی باتیں پہنچ گئی دل کو، تو دل کو گندا کر لیا، تو جتنی محنت ہوگی وہ ساری محنت ضائع ہو گئی. ہاں جی، اچھا اس میں البتہ ایک بات ضرور ہے، جس کو گناہ اور ثواب کا کنسیپٹ ہوگا اس کو پتہ چلے گا. جس کو گناہ اور ثواب کا کنسیپٹ نہیں ہوگا اور صرف ذکر اور عدم ذکر کا ہوگا، اس کو اس چیز کا پتہ نہیں چلے گا. یہ والی بات ہے. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ نفس کے میدان میں اترتے نہیں ہیں، یعنی اس کا ان کو خیال ہی نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں چلتا، ان کی بزرگی جاری رہتی ہے. وہ گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ان کی بزرگی ختم نہیں ہوتی، محسوس کر رہے ہوتے کہ مثلا نماز نہیں پڑھ رہے، ان کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ میں نقصان اٹھا رہا ہوں. وہ اپنے مراقبات ان کو یاد ہوتے کہ میں فلاں مراقبہ کر رہا ہوں، فلاں کر رہا ہوں، فلاں کر رہا ہوں. وہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں بزرگی ان کی ختم نہیں ہوتی. لیکن جن کو نفس کا پتہ چلتا ہے کہ نفس سے کیا کیا نقصان ہوتے ہیں اور اس کے بارے میں وہ کانشس ہوتا ہے، ان کو فوراً ظلمت کا احساس ہوتا ہے اور توبہ استغفار شروع کر لیتے ہیں، اور جو نا مطلب ہے ان کو پتہ بھی چلے. وجہ کیا ہے کہ وہ اینگل ہے دیکھنے کا، کہ کس اینگل سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. ہاں جی، جس اینگل سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اسی طریقے سے آپ کو محسوسات ہوں گی. تو جو لوگ مطلب یہ ہے کہ گناہوں کی بارے میں کانشس نہیں ہوتے، تو وہ ان کو اس کا پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ مجھے ظلمت کا احساس ہو رہا ہے. ہاں جی، لیکن جس کو اس کا ہوتا ہے تو ذرا بھر بھی بے احتیاطی کر لیتے ان کو فوراً پتہ چل جاتا ہے. اس وجہ سے ہمارے شاہ اللہ مصب جو فرمایا ہے کہ جن کو لطائف کی حقیقت کا علم نہیں ہوتا تو اٹکل پچو طریقے سے چلتے ہیں، فائدہ ہو بھی سکتا ہے، فائدہ نہیں بھی ہوگا، پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہوگا اس کے ساتھ. لیکن جن کو لطائف کی حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے تو وہ پھر صحیح علاج کر سکتے ہیں. ان کے بارے میں ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز صحیح جا رہی ہے، کون سی چیز غلط جا رہی ہے، اس کو اس کا اندازہ ہوتا ہے. تو یہاں پر دیکھیں، اس بچی سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ اس نے بالکل صحیح ریڈنگ کی ہوئی ہے، چونکہ وہ پہلے سے اس کے بارے میں اویئر ہے کہ میں گناہ نہ کروں اور گناہ کی ظلمت کا اس کو احساس ہے، لہذا اس کو پتہ چل رہا ہے نقصان ہو. توبہ تو کرتی ہوں، اللہ پاک سے دعا بھی کرتی ہوں، रो रो कर, जैसे कि आप फरमाते हैं। मैं आपको ये बातें बताकर परेशान नहीं करना चाहती हजरत जी, मैं जानती हूँ कि आपको मालूम है, आप तो आप भी फरमाते हैं, लेकिन जिक्र का बताना था तो इसलिए बता दिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरा 1 महीने का मुराक़बा लतीफ़े क़ल्ब पर मुकम्मल हो चुका है। 20 मिनट का मुराक़बा था। स्टार्ट में दिल की धड़कन बिल्कुल साफ़ सुनाई देती थी, पर अब आहिस्ता सुनाई देती है, कभी तो बिल्कुल आवाज़ नहीं आती है। शायद मैं समझ नहीं सकती क्योंकि बहुत आहिस्ता आवाज़ आती है। शाह साहब, आप मेरे लिए मज़ीद क्या हुक्म है? अल्लाह हाफिज। माशाल्लाह, आपने जो बता दिया बिल्कुल सही बताया है। इसका नाम है लतीफ़ा। लतीफ़ा बारीक चीज़ को कहते हैं। लतीफ़ा के मुकाबले में कसीफ़ा है। हमारे हजरत मसर शाह साहब रहमत ने बड़ी अजीब बात फरमाई थी। फरमाए, आपको अच्छे माहौल में लताइफ चलते हुए महसूस होते हैं, हम तो जब गुनाहों के माहौल में पहुंच जाते हैं तो वहां हमें ज्यादा लतीफा महसूस होता है। मैंने उनकी बात पर गौर किया तो पता है बात बात क्योंकि लतीफा जितना लतीफ होता है महसूस नहीं होता, यानी गोया कि आप उसकी तवज्जो करें फिर महसूस हो जाएगा, लेकिन वैसे आपको महसूस नहीं होगा जैसे कि नहीं हो रहा। हाँ जी, लतीफा जो होता है जैसे गुनाह के माहौल में जाता है तो वो डाउनग्रेड हो जाता है, तो कसीफा बन जाता है। अब कसीफा बन जाता है महसूस ज्यादा होने लगेगा, और यही उसके जुल्मत का इदराक का भी तरीका है कि मतलब आपको जो है ना वो जुल्मत के इदराक इससे होगा तो आप अलर्ट हो जाएंगे, आप कहेंगे ये तो मसला हो गया। मिसाल के तौर पर देखो, जैसे यानी किसी आपने कुछ अलार्म सेट किया हुआ है कि कोई खतरा हो तो आप अलार्म बजे। अब ये बात है आपके जिस्म में अलार्म सेट हैं, अब अगर किसी खतरे की जगह पे और अलार्म न बजे तो आपका अलार्म सिस्टम तो फेल हो गया, लेकिन अलार्म बजने लगे तो आपको पता चल गया कि भाई मैं खतरे के जोन में दाखिल हो गया। हाँ जी, वो एक दफ़ा हम गए जा रहे थे एक फैक्ट्री का मुशाहिदा, क्या हो गया वो आया कर, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड इस्तेमाल होता था, तो मैंने सबसे पहले कहा कि भाई ये तो सल्फर डाइऑक्साइड किस मिला रही। तो मेरे साथ जो डॉक्टर साहब थे वो कहते नहीं आ रही। मैंने कहा चलो आपको नहीं आ रही, अभी 5-6 कदम गए, वो कहते हाँ नहीं आ रही है। बस वो 5-6 कदम मेरा ज़रा स्पीड ज़्यादा थी। मुझे 5-6 कदम पहले पता चला, उनको 5-6 कदम बाद में पता चला, लेकिन चीज़ तो मौजूद थी। तो अलार्म सिस्टम जितना एक्टिव होगा सही होगा तो पता चलेगा ना कि भाई कोई मसला हो गया है। हाँ जी, तो ये जो है ना मतलब कसीफा जो है वो इसीलिए होता है ताकि आपको पता चल जाए। बाकी यह है कि बिल्कुल महसूस ना होना ये अलग बात है, और कम महसूस होना ये दूसरी बात है। तो कम महसूस होने में अगर वक्त गुजरने के साथ कम हुआ है तो उसका मतलब ये होता है कि आप उसके साथ, और अगर आप गफलत की तरफ चले गए उसकी वजह से कमी हो गई तो आपके सेंसेस कमजोर हो गए, यानी उसका समझ में आ गई ना बात, तो फिर अपने सेंसेस को इम्प्रूव करना पड़ेगा। हाँ जी, दोनों चीज़ों का अपने तौर पे ये ख्याल रखना पड़ेगा इंशाल्लाह। अभी आप इसको जारी रखें, लेकिन मुराकबे से पहले 1000 मरतबा अल्लाह अल्लाह जुबान के साथ कर लिया करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आप हजरत को जब भी अपना महाना रिपोर्ट भेजती हूँ तो शर्मिंदगी और अफसोस होता है। शर्मिंदगी इस बात की कि अलहमदुल्ला तकरीबन हाँ की तादाद ज़्यादा होती है, मगर हकीकत में देखा जाए तो न तो इबादात में एक सुई है नहीं तवज्जो। अफसोस इस बात के होते हैं कि 1 महीना मेरी ज़िंदगी में कम हो गया और कुछ भी हासिल नहीं किया। आप हजरत के बयानात और कोशिश को देखती हूँ तो अपने आप में हद कमतर लगता है, लताइफ और फिर सलूक के सफ़र को देखती हूँ तो अपना अपना इलाज लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरत के दिए गए वज़ाइफ़ सारी करती हूँ, और कभी कभी नागा नहीं किया, कभी नागा नहीं किया, मगर अपने आप पर रूहानियत के हिसाब से कुछ फ़र्क महसूस नहीं होता। कभी कभी ऐसा लगता है कि एक कदम भी आगे नहीं जाऊँगी और इस तरह मौत आ जाएगी। हाँ जी, तो मैंने इसका जवाब दिया कि न मायूसी होनी चाहिए न गर्रा, इसके दरमियान दरमियान बात रहे तो कामयाबी इंशाल्लाह दूर नहीं। हाँ जी, इसकी वजह यह है कि किसी चीज़ की मारिफत ना हो तो बाज़ दफ़ा मायूसी हो जाती है, हालांकि वो मायूसी की बात नहीं होती बल्कि वो तो माशाल्लाह खुशखबरी होती है। हज़रत तानवी रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने ख़त लिखा कि हज़रत मुझे अपने आप का ख़तरा है, तो हज़रत ने जवाब दिया फरमाया यही ख़तरा ही मारिफत का ख़तरा है, यही ख़तरा ही मारिफत का ख़तरा है, यानी आपको एहसास है, आपको पता चल रहा है, आपको अवेयरनेस है, तो इसीलिए तो आपको खतरा है। बच्चे को खतरा होता है? बच्चे को कोई खतरा नहीं होता, लेकिन बड़ों को बच्चों का भी खतरा होता है, अपना भी खतरा होता है, क्योंकि वो जानते हैं। तो इस वजह से फरमाया कि यही खतरा तो मारिफत का खतरा है। तो बहरहाल ये है कि आपको माशाल्लाह जो अवेयरनेस है इसकी वजह से माशाल्लाह आपको मायूसी महसूस हो रही है कि काम नहीं हो रहा, हालांकि ऐसा नहीं है, काम हो रहा है। सबसे बढ़कर ये बात है कि आपको इस बात का जो एहसास हो रहा है कि मैं कुछ भी नहीं कर रही, यही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हजरत गंगूई रमो से फरमाते हैं कि बरसों के बाद अगर ये हालत हासिल हुई कि कुछ भी हासिल नहीं हुआ तो सब कुछ हासिल हुआ, क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि मुझे फलां हासिल हो गया फलां हासिल हो गया, तो इसका मतलब है कि आपको कुछ भी हासिल नहीं हुआ, आपको सिर्फ दावे हासिल हुए। जिसको फिक्र होती है उसको खतरा होता है, और उसके मुताबिक यानी उसको कमाल हासिल होता है। तो आप फिक्र ना करें इंशाअल्लाह अजीज। फिर आप उन्हें लिखा कि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू, एक सवाल काफी वक्त से जहन में कि मायूसी का मतलब यह किसी काम को नामुमकिन समझ कर छोड़ देना, और अगर नामुमकिन समझ कर भी करे तो ये क्या ये मायूसी के जुमरे में आता है? नहीं, असल में बात यह है कि आपको नतीजे की तरफ खुद नहीं आना चाहिए, बस इतनी बात मैं कहूँगा। नतीजा खुद ना लगाए, क्यों? वजह क्या है कि चूंकि आपको इस रास्तों की मारिफत फिलहाल नहीं हुई, तो लिहाजा आपकी रीडिंग जो है ना वो गलत हो सकती है। तो ये बात शेख पर छोड़ें। मुझसे किसी ने कहा कि हजरत अपनी तरक्की का पता चलता है आदमी को खुद? मैंने कहा नहीं। कहते क्यों? मैंने कहा हजरत तानवी वसम ने फरमाया कि ये दुनिया अक्स है, अगर कोई दरिया के किनारे दरख्त हो उस पर कोई चढ़ रहा हो तो दरिया में क्या नजर आएगा? ऊपर चढ़ते हुए नजर आएगा, नीचे जाता हुआ नजर आएगा? दरिया में नीचे चढ़ते हुए जाता हुआ नजर आएगा, हालांकि वो इस हकीकत में चढ़ रहा होगा, और जो उतर रहा होगा तो दरिया में चढ़ते हुए नजर आएगा, नीचे उतर जाओ दरिया में चढ़ते हुए नजर आएगा। तो चूंकि आपको हकीकत का इदराक नहीं है, यह अक्स है, लिहाजा आप, लेकिन जिनको अल्लाह ताला ने एक काम सौंपा है और उनको अल्लाह ताला ने दोनों चीजें दी होती हैं, हाँ जी, वो ये है कि उनको इसका भी पता चलता है उसका भी पता चलता है, तो लिहाजा वो दरिया के अंदर भी देख रहे हो दरिया के बाहर भी देख रहा होता है, तो जो है ना मतलब ये है कि वो सही रीडिंग कर लेता है, तो उनकी बात पर यकीन करोगे। यही वजह है कि मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे कि हजरत ने एक मौके पर मुझे इतना डांटा कि मुझे अपने आप से गिनाने लगी, और मैं समझ रहा कि सारा कुछ खराब हो गया। कहते इतने में हजरत का खादिम आया कि हजरत आपको बुला रहे हैं। मैंने कहा अल्लाह पता नहीं अब क्या होगा, हाँ जी काम तो मेरे कोई ठीक नहीं हो रहा। तो कहते जब अंदर मैं चला गया तो हजरत ने फरमाया कि मुझे अपने बुजुर्गों से जो माशाल्लाह जो नस्बत पहुंची है आपको बशारत देता हूँ कि इजाज़त देता हूँ कि आप भी इसको, कहते मेरे पैरों से जमीन निकल गई कि ये क्या हुई, वो पहले क्या था ये क्या था, अब मुझे बताओ कि उसकी अपनी रीडिंग पर वो अपने आप को काबिल समझ सकता था, लेकिन उसका ये काबिल न समझना काबिलियत थी, उसका ये काबिल अपने आप को न समझना यही काबिलियत थी, जिसका उसको इंतजार था हजरत को, तो जब ये हो गया तो बस काम बन गया। हाँ जी, अल्लाह अकबर। मिसाल के तौर तो पर कोई बंदे अपने आप को सलूक के पहले दर्जे तक पहुंचने के काबिल भी न समझे मगर अपने मुर्शिद की वजह बाकायदगी से करे, तो आप हजरत की रहनुमाई की अशद ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है, अपने आप को काबिल नहीं समझना चाहिए लेकिन काम जारी रखना चाहिए। वो हमारे बुजुर्ग फरमाते थे कि ये चीज़ ऐसी है, वलस्त मिनहुम, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। यानी मतलब ये कि मैं मुझे नहीं हासिल लेकिन चीज़ ऐसी है, मतलब इसको हासिल होना कहते हैं। जो हजरात सुन रहे हैं एक बात जरा याद कर लें, याद रखें कि जो भी टेक्स्ट मैसेज कर ले या ऑडियो कर ले, जो भी हो, कम से कम जिस वक्त वो कहते हैं मेरा जिक्र मुकम्मल हो गया, तो उसका मुझे क्या पता कि आपका कौन सा जिक्र था। मुझे हजारों लोगों का तो पता नहीं चल सकता कि भाई फलां को मैंने ये जिक्र दिया था, फलां को ये जिक्र दिया था। तो ये मुकम्मल होने के साथ ही बताओ कि मेरा ये जिक्र था या मुकम्मल हो गया, और उसके साथ कैफियत भी बता दिया करें ताकि बार बार पूछने की जरूरत ना पड़े। हाँ, मतलब यह है कि इस सात जिक्र की तादाद बताओ कि क्या था, और अब इसके साथ क्या कैफियत आप महसूस कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें मुकम्मल इसके साथ भेजा करे। अब उसमें ये बात है कि चीज़ें तो लिख लेते हैं लोग 10, लेकिन पूरा एक भी नहीं होता। किसी की कोई चीज़ कम होती, किसी की कोई चीज़ कम होती है, तो फिर जवाब तो नहीं दिया जा सकता। तो एक बेशक पूछो लेकिन पूरा तफसील के साथ पूछो। इसमें जिक्र का भी बताया कि इतना जिक्र था, फिर इसके साथ इसकी कैफियत ये थी, और फिर ये बताया कि मुकम्मल हो गया। तो इस तरीके से इंशाल्लाह ज़्यादा बेहतर होगा। अस्सलाम वालेकुम हजरत जी। बहुत ज़्यादा कोशिश के बावजूद कभी कभार गैर इरादीपन गालिब आ जाता है। हजरत जी आज मैंने हक 100 के बजाय 600 से ज़्यादा पढ़ा, नहीं 400 के बजाय 600 से ज़्यादा पढ़ा, जबकि मैं सोच रहा था कि अभी तो 200 भी नहीं हुआ पढ़ते वक्त। हजरत जी बहुत ज़्यादा माफ़ी का तलबगार हूँ, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। इसका मतलब है कि आप शायद तस्बीह के बगैर करते होंगे, तो तभी पता नहीं चला। तस्बीह लंबी ले लिया करें, वो जो है ना, वो जो हज़ार दानों वाली होती है, और उसके हिसाब से आप जो है ना, मतलब वो कर लिया करें कि उस पर निशान लगाए कि यहाँ तक 400, यहाँ तक 600, उसके हिसाब से आप लोग कर लिया करें। उससे जो है ना फिर गलती नहीं होगी। हाँ जी, मतलब ये है कि हम हमारे हजरत फरमाते इतने गफलत भी तो नहीं होनी चाहिए ना, यानी जो आपको ये भी मालूम ना हो सके कि मैंने कितना पढ़ा। हाँ जी, गफलत भी नहीं होनी चाहिए। तो आइंदा के लिए आप इसके लिए वो तरतीब बनाएं कि तस्बीह लंबी ले लें, जैसे हज़ार दानों वाली, और उस पर आप निशानी लगा दें कि इतने पे ये, इतने पे ये, तो फिर इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम हज़रत जी। कुछ भी पाने का अंदेशा नहीं रहा, न दुनिया में, अल्लाह मुझे माफ़ करे, ना आखिरत के मरतबे की लालच, बस एक गम कि अल्लाह राज़ी हो। हज़रत जी बहुत निडाल हो जाता हूँ, और दिल करता है कि बहुत ही तवील गुनूद की तारी रहती, बहुत ज़ोर लगा कि दुनिया के काम करने पड़ रहे हैं, बहुत ही खोखला था, मज़ीद हो गया हूँ। अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ फरमाए। आमीन। हम सब के गुनाह अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। बहरहाल नतीजा सही होना चाहिए, ये तो कैफियात आने जानी है, कैफियात आने जाने चीज़ होती है, असल चीज़ जो है ना वो नतायज है। तो फरमाते अहवाल तब्दील होते रहते हैं, मुकामात कायम रहते हैं, अल अहवाल मुआहिबन वल मुकामात मुकासिबन। अहवाल जो है ना, मतलब एक वह भी होते हैं, आते हैं चले जाते हैं, और जो मुकामात होते हैं अपनी जगह बाकी रहते हैं। तो लिहाजा मुकामात को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए, ये बहुत आम बात है। एक साहब ने सवाल किया, लेकिन उस पर तो पूरा बयान करने की ज़रूरत है, तो वो तो इतना टाइम तो नहीं है। वो स्कूलों के बारे में पूछा है, तो अच्छा खासा बयान का मतलब है। एक और ने सवाल किया है किसी खातून ने, वो पॉलिटिकल है, तो यहाँ पॉलिटिकल चीज़ें भी डिस्कस नहीं होती, मतलब ज़ाहिर है हम लोग पॉलिटिशियंस तो नहीं है कि पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहे। ठीक है, बात सवाल उनकी गलत नहीं है, लेकिन लिट पॉलिटिशियंस आंसर दें, मतलब वो पॉलिटिकल पॉलिटिकल चीज़ है। अल्लाह अकबर। हजरत जी, 4,500 दफ़ा अल्लाह अल्लाह कर रही हूँ, एक माह हो गया है, बाकी मामूलात भी कर रही हूँ। मैंने पूछा अब जिक्र किन किन जगहों पर महसूस होता है, तो जवाब दे कि हजरत जी, कभी सब जगह लगता है, कभी कहीं भी नहीं लगता, लगता लगता पता नहीं चलता। हजरत जी, कभी लगता है पूरे जिस्म में जिक्र हो रहा है और कभी कुछ भी महसूस नहीं होता। तो मेरे ख्याल में अब आप ये जो जो आपको लिसानी जिक्र का बताया था, इसका मकसद यही था कि आपके ये लताएफ वाला जिक्र जो है ना वो एक्टिवेट हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिवेट तो हो गए। ये वो खातून जो कहते मेरे चली नहीं, मतलब कोई लतीफ़ा नहीं चलता था, अब देखो 4,500 तक पहुंच गया तो चलना शुरू हो गया। हाँ जी, तो उसका मतलब है क्या? नहीं, दिस इज़ द प्रोसीजर, मे बी फॉलोड। ठीक, तो सही है, मतलब यह है कि अब बच्चों की चलना शुरू हो गया है, तो अब अपने लताइफ के ऊपर जो है ना आप वो कर लें, शुरू कर लें, वही पहले लतीफ़े पे आधा घंटा, लतीफ़े कल्ब के ऊपर आधा घंटा आप जो है ना वो तस्वर कर लें कि ऐसे ही हो रहा है जैसे कि पहले महसूस होता था आपको, यानी अल्लाह अल्लाह होते हुए, ये से आप शुरू कर लेते हैं, इंशाल्लाह अभी चल पड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर डूइंग वेल हजरत, इंशाल्लाह आई वांटेड टू आस्क अबाउट इलम, डू यू थिंक वी शुड सीक रिलीजियस इलम, हाउ डू यू थिंक कैन वी सीक इलम इन रावलपिंडी, आई एम ए प्रोफेशनल हु गेट्स फ्री ऑन वीकेंड ओनली, जजाकल्ला खैर फला, डू यू थिंक वी शुड ओनली फोकस ऑन ए फ्यू उलूम एंड हैव द रेस्ट लाइक तजवीद। किसी को अपने आप को कन्फ्यूज़ करना हो तो उसका तो इलाज नहीं है। हाँ जी, अगर कन्फ्यूज़ करना हो, वरना बात बिल्कुल सिंपल है और हम बार बार कह चुके हैं कि इल्म की दो किस्में हैं, एक फ़र्ज़ ऐन इल्म है और एक फ़र्ज़ किफ़ाय, फ़र्ज़ किफ़ाय इल्म है। फ़र्ज़ ऐन इल्म सब के ऊपर फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ ऐन इल्म सब के ऊपर फ़र्ज़ है, और अगर कोई हासिल करना चाहे तो हमने इसके हिसाब लगाया है कि अगर दो लेक्चर डेली कोई सुने, इसकी दो लेक्चर डेली इस पर, तो तकरीबन 2 महीने में पूरा हो जाता है। अब इस हिसाब से अगर कोई 10 मिनट कर ले तो इस हिसाब से टाइम बढ़ जाएगा। तो वीकेंड के हिसाब से आप देख लें, मेरे ख्याल में हमारे पास ये चीज़ें हैं, तो वो अगर आप ले लें और उसको आप बाकायदा सुनें, उसके इम्तिहान वगैरह भी दें, तो इंशाल्लाह लजीज़ आप फ़र्ज़ ऐन इल्म हासिल कर सकते हैं। तो फ़र्ज़ैन में तमाम ज़रूरी उलूम आ जाते हैं जो इसके मुताबिक होते हैं, वो आप हासिल कर लें इंशाल्लाह। बाकी तो तरबियत है, तो तरबियत भी फ़र्ज़ैन है, इस्लाह अपनी वो भी फ़र्ज़ैन है, तो इन दोनों फ़र्ज़ैनों को कर लें, बाकी तो अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो यही काफ़ी है, बाकी काम जो कुछ आप कर सकते हैं अच्छे काम वो करते रहें, और अगर टाइम है तो फिर माशाल्लाह, फिर आप उसके लिए अपने टाइम फारिग कर लें। आई डिड नॉट गेट रिप्लाई ऑफ दिस ऑडियो सो रिस्पॉन्डिंग सो रिसेंडिंग दिस, मुझे नहीं मालूम कि इसका जवाब मैंने नहीं दिया, लेकिन बहरहाल कोशिश करते हैं।
अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान बात कर रहा हूँ यूके से। आपके एडवाइस के मुताबिक आखिरी जो महीना गुजरा है उसमें मराक़बे का टाइम 20 मिनट कर दिया है। जिक्र के अलावा जो जिक्र था वो 200 दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह 400 مرتبہ لا الہ الا ہو اور 600 مرتبہ حق تھا، اور اس کے علاوہ 20 منٹ کا مراقبہ۔ تو مراقبے کے دوران اللہ اللہ محسوس ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر سانس کے ساتھ محسوس ہوتا ہے، اندر باہر لینے سے، کبھی دل کی طرف بھی محسوس ہوتا ہے اور کبھی خاموشی بھی چھا جاتی ہے۔ تو اس میں ایک بات یہ
جو آپ
پوچھنی
تو
تھی
دے چکے ہیں،
کہ عام طور پر کنسنٹریشن کس نقطے پہ کرنی ہے، دل کی طرف رکھنی ہے کنسنٹریشن، یا اللہ اللہ کی طرف اپنے کان مرکوز رکھنے ہیں، یا دونوں کے درمیان چیز رکھنی ہے، یا اپنی توجہ رکھنی ہے، یا جو بھی آپ ایڈوائز کریں، تو اس میں تھوڑی سی کنفیوژن ہے۔ دوسرا یہ کہ عام حالات میں، یعنی کہ مراقبے کے علاوہ روٹین ایکٹیویٹی میں اللہ اللہ محسوس ہوتا ہے، کبھی خود بخود محسوس ہونے لگتا ہے، کبھی توجہ کرنی پڑتی ہے تو محسوس ہوتا ہے، کبھی محسوس نہیں بھی ہوتا، کبھی زیادہ یا کبھی کم۔ تو یہ کچھ ویریشن ہے، اس میں مستقل چیز نہیں ہے۔ تو اس میں بتا دیں کہ کیا یہ ایسا صحیح ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ دل میں ہم جو بولتے ہیں یا دل میں کچھ سوچتے ہیں، تو ویسے ہی اللہ اللہ کی طرف ایسا لگتا ہے کہ دل میں اللہ اللہ ہم سوچ رہے ہیں یا ذکر کر رہے ہیں۔ تو ایک یہ ہے۔ دوسرا، عام زندگی کے حالات میں کبھی کبھی بیزاری محسوس ہوتی ہے کہ ان ذکر سے، یا جو بھی نماز وغیرہ ہے، تو لگتا ہے کہ اس ذکر سے کچھ حاصل نہیں ہوگا اور کوئی تبدیلی نہیں آئے گی وغیرہ وغیرہ، تو بہت نیگیٹو خیال آتے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ جسے ایسا لگتا ہے کہ یہ میری جو بھی زندگی ہے یا گناہ ہے، ان کے سامنے تو یہ ذکر کچھ بھی نہیں ہے، تو ان ذکر کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ تو وہ اس چیز کی وجہ سے بہت ڈسپائنمنٹ سی محسوس ہوتی ہے۔ نماز میں کبھی یہی خیال آتا ہے کہ نماز تو میری بہت غلطیوں سے پر ہے، تو اس سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا، تو کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ بس شاید آگے آگے کچھ حاصل نہیں ہوگا، آگے شاید یہ چیز چھوٹ جائے گی، تو یہ ایسا لگتا ہے کہ استقامت میں کمزوری سی محسوس ہوتی ہے کہ آگے شاید شاید میں کنٹینیو نہ کر سکوں۔ تو یہ تھوڑی سی بس آپ اس میں
دیکھیے، اگر آپ باقاعدگی کے ساتھ ہمارے بیانات سنتے ہیں تو میرے خیال میں اس میں جوابات سارے موجود ہیں، اور غالباً اس کا جواب بھی میں دے چکا ہوں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے نہیں دیا تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا. لیکن بہرحال میں ریمائنڈ کرتا ہوں کہ تین لطائف کے اوپر بات ہوتی ہے، دل کی، نفس کی اور عقل کی. یہ تین بار بار میں بتاتا ہوں. ذکر کا تعلق جو ہے وہ زیادہ تر دل کے ساتھ ہے، اور نفس کا تعلق ہے مجاہدہ اور ریاضت کے ساتھ اور قناعت کے ساتھ، جو نفس کے اوپر مجاہدات آتے ہیں ان کے ساتھ ہوتے ہیں. نفس کی اصلاح تو اس طریقے سے ہوگی، لیکن اس کے لیے پہلے دل کو تیار کرنا ہوتا ہے کہ وہ نفس کو تیار کر لے کام کرنے کے لیے. اسی کو جذب کسبی کہتے ہیں. تو ابھی آپ اس تک پہنچے ہی نہیں کہ ہم نے آپ کے نفس کی اصلاح کے لیے پروگرام آپ کو بتایا ہو. تو ابھی آپ نے شروع ہی نہیں کیا تو آپ کیسے مایوس ہو سکتے ہیں؟ پہلے تو اسی کو مکمل کر لے تاکہ آپ کو جو ہے نا، مطلب یہ جذب بھی کسب بھی اتنا حاصل ہو جائے کہ آپ اپنے نفس کے اوپر کنٹرول تو کر سکیں اور اپنے نفس کے علاج کر سکیں. تو اس سٹیج پر جب پہنچیں گے تو ہم آپ کو خود ہی بتا دیں گے کہ اب آپ یہ چیزیں چھوڑ کر آپ یہ کریں. تو اس وقت پھر آپ کو ان چیزوں کا پتہ چلے گا کہ کیسے ان کو کنٹرول کرنا ہے. باقی یہ والی بات میں عرض کرتا ہوں کہ جو آپ نے بتایا ہے کہ ذکر کبھی محسوس ہوتا کبھی نہیں محسوس ہوتا، تو یہ چونکہ انسان کی جیسے بائیو کیمسٹری میں چینجز آتی ہیں اور پیتھولوجی میں چینجز آتی ہیں، اس طرح نفسیاتی کنڈیشن میں بھی چینجز آتی ہیں، اور یہ ذکر کے ساتھ جو مطلب محسوسات ہیں وہ ان تین چیزوں کے ساتھ مکس ہو کے ہوتی ہیں، تو جو باقی ویریشنز ہیں ان ویریشنز کی وجہ سے بعض دفعہ آپ جو ذکر محسوس کرنا چاہتے ہیں اس وقت محسوس نہیں ہوتا، لیکن اس کا اثر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت جب آپ نہیں کر رہے ہوتے وہ شروع ہو جاتا ہے. تو کیسے شروع، پہلے کیوں شروع نہیں ہوتا تھا؟ جب پہلے آپ نہیں کرتے تھے تو پہلے تو یہ چیزیں نہیں تھیں، کبھی آپ کا خود بخود شروع ہوا تھا پہلے کبھی؟ تو اس کا مطلب اسی وجہ سے شروع ہے نا کہ آپ نے کیا ہے تو اس کا اثر ہوا ہے تو پھر شروع ہوا ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے مطلب جو دل کے اوپر اثر ہو رہا ہے. البتہ یہ کہ مستقل طور پر نہیں ہوتا، وہ دوسری چینجز کی وجہ سے ہے کہ اب مطلب جو ہے نا وہ نہیں، مطلب ایک وقت میں ہو رہا ہے دوسرے وقت میں محسوس ہو جاتا ہے. اس وجہ سے اس سے تو ہم مایوس نہیں ہے کہ آپ کو اثر نہیں ہو رہا. البتہ मैं ये बात जरूर करूंगा कि शैतान आपको मायूस करना चाहता है ताकि आप इन चीजों को छोड़ दें, और वो आपके दिल में वसवसे डाल रहा है, तो अकल के जरिए से उसको दफा कर लिया करें। कि ये कह दे कि मतलब ये तो मेरा काम अभी शुरू नहीं हुआ, मैं तो प्रिपरेशन में हूं। अब मिसाल के तौर तो पर कोई FSC का स्टूडेंट कह दे जी हमें बायोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ाई जा रही, तो उस वक्त कहे भाई तुम पहले मेडिकल कॉलेज में दाखिला तो लो, फिर इसके बाद देखो भाई क्यों बायोकेमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी ना, अभी तो आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़े, इलेक्ट्रिकल केमिस्ट्री पढ़े, अभी तो आपके ये दिन है। हाँ जी, अभी आपको वक्त ही नहीं आया। हाँ जी, तो वक्त से पहले न भागे डॉक्टर साहब, आपने माशाल्लाह तमाम काम किए हुए हैं, वक्त से पहले न भागे, अपने अपने वक्त पर सारी चीज़ें समझ में आती हैं। अलबत्त इस मसले में एतमाद ही बड़ी चीज़ होती है, कि अगर शेख पर एतमाद हो तो काम चल पड़ता है, शेख पर एतमाद में कमी हो जाए तो काम रुक जाता है। मतलब ताजील जो है, जिसको पांच चीज़ों में बताया गया है कि ताजील की वजह से किए कराए सारे पे पानी फिर सकता है, तो ताजील में इसीलिए होता है कि सबसे पहले शेख पे बदगुमानी होती है, फिर निज़ाम पे बदगुमानी होती है, फिर अल्लाह ताला की तरफ बात चली जाती है, तो बाज़ दफ़ा इसकी वजह से मर्दूद भी हो जाता है। हाँ जी, तो इस वजह से सिस्टम के साथ भी बदगुमानी ना करें, शेख के साथ भी बदगुमानी ना करें, अपने आप के ऊपर भी बिला वजह बदगुमानी ना करें। जो काम हो रहा है इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे ले, इन शकर तुम लाजीदन्नकुम, जब आप अपनी अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह ताला इनको मजीद बढ़ाएगा। ये जो अल्लाह ताला ने आपको दी दौलत दी है कि आप UK में बैठ कर ये काम कर रहे हैं, हालांकि आप पाकिस्तान में बात लोग नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, तो अल्लाह ताला का आपके साथ एहसान का मामला है, तो इस एहसान पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, तो इंशाल्लाह अज़ीज़ इससे मजीद नतज पैदा होंगे। बहरहाल दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब की जो असल मुरादें पूरी कर लें और हम लोगों की इस्लाह फरमाएं, लेकिन इस्लाही निज़ाम इसके असबाब में है, लिहाजा इन असबाब से अपने आप को नहीं काटना चाहिए। इंशाल्लाह कामयाबी अपने वक्त पर अल्लाह ताला नसीब फरमा देंगे। अस्सलाम वालेकुम। सवाल के अंदर, क्या शेख को गुज़िश्ता गुनाह भी बताना ज़रूरी है जो मसलन 10 साल पहले किए और मुरीद इन गुनाहों से दूर भी हो चुका हो? पता नहीं, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में जब इंसान किसी जगह पे सर्विस करता है तो मेडिकल जब उनका होता है तो उनसे ये सवाल भी पूछ जाते हैं कि कोई बीमारी ऐसी हो जो आपको गुजर चुकी हो, लंबी बीमारी पूछा जाता है ना, जिसका इलाज हो चुका हो तो पूछते हैं, तो किस जब इलाज हो चुके तो फिर पूछने की क्या ज़रूरत है, उसमें क्या हिकमत है? उसमें हिकमत यह है कि बाज़ बीमारियों इलाज के बावजूद बाकी दूसरी बीमारियों के लिए ज़रिए बन सकती हैं, तो डॉक्टर को पहले से मालूम होना चाहिए कि इसके क्या क्या बीमारियाँ पॉसिबल हैं नेक्स्ट में। मतलब ये कि वो जो है ना इसके रिपर मतलब उसके जो है ना कंसिक्वेंसेस में क्या क्या कुछ हो सकता है, या इसकी कौन सलाहियतों पर जद पड़ी होगी, मसलन उसको दौड़ाना नहीं ज़्यादा नहीं चाहिए, या कोई उसको और काम मतलब फटीग में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उनको एक बीमारी गुजर चुकी है तो ज़ाहिर है उसकी वजह से उनकी सेहत तो मुतासर हो चुका है, तो बेशक उसका इलाज भी हो चुका हो लेकिन उसके असरात तो होते हैं, तो ये बात है। तो इसी वजह से ये जो गुनाह वगैरह लोग के माफ़ भी हो चुके हों तो शेख को इसलिए बताना होता है ताकि शेख को पता चल जाए कि कौन से गुनाहों के लिए ज़्यादा एक्सपोज दे, और फिर बाद में भी उनसे इस किस्म के गुनाह हो सकते हैं, तो उसको जब मालूम होगा तो उसके हिसाब से फिर वो तरीक़ाकार भी मरतब कर लेगा। तो बहरहाल हमने तो एक ही बात सुनी है कि शेख से कोई चीज़ नहीं छुपानी चाहिए। हाँ जी, ये इंसान की अपनी है, उसमें है, हक में है, क्योंकि डॉक्टर से कोई चीज़ छुपाई जाए तो नुकसान अपने आप को ही होता है, डॉक्टर को तो कोई नुकसान नहीं होता लेकिन अपने आप को तो नुकसान होगा ना, क्यों उसको वो तो उसको नहीं कंसिडर करेगा फिर। हाँ जी, जब आप बताएंगे तो उसको पता होगा, तो खैर बोलने वाला। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, मेरा इलाज जिक्र एक मुकम्मल हो गया है, 200 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह, 400 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु, 600 मरतबा हक, 300 मरतबा अल्लाह मजीद रहनुमाई दरकार है। अभी आप 200 मरतबा ला इलाहा, 400 मरतबा ला इलाहा, वो 600 मरतबा हक और 400 मरतबा अल्लाह कर ले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हज़रत क्या छोटी छोटी बच्चियों को लेगन और टाइट्स पहना सकते हैं या उनके मामले में भी एहतियात बरतनी चाहिए? इसी तरह हाफ स्लीव्स या विदाउट स्लीव्स कपड़े पहना सकते हैं या नहीं? बाज़ार में छोटी बच्चियों के लिए ऐसे ही कपड़े आमतौर पर दस्तयाब हैं। असल में एक हदीस शरीफ से मैं ज़रा इस्तदलाल करने की कोशिश करता हूँ। नमाज के लिए फरमाया है कि 7 साल का बच्चा हो जाए तो उसको नमाज शुरू करवानी चाहिए, अगर उसके ऊपर नमाज फर्ज नहीं होता। और 10 साल का हो जाए तो फिर मारकर पढ़ाना चाहिए, हालांकि उस वक्त बुजुर्ग बालिग तो नहीं होता। तो कोई कि पहले से प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात की गई है, क्योंकि आदत एकदम तो नहीं बनती, ये टाइम लेती है। तो अगर आप बिल्कुल ही बलूग तक वो उसको रखेंगे तो जब वो शुरू हो जाएगा तो उस वक्त वो अपने ना पढ़ने के साथ आदि हो चुका होगा, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। इसी तरीके से लिबास का जो मामला है, ये भी जब बच्चे किस चीज़ के साथ आदि हो जाते हैं फिर वही बड़ी उम्र में भी उनको वही मतलब जो है ना वो होती है कि हम ये करें, तो इसमें जो है ना फिर वो मुश्किल होता है। और मेरा ख्याल है कि जिसने ये सवाल किया उसको ये सवाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको तो पता है कि इसके मामले में हम लोग कितना यानी वो हैं कि हम तो यही कहते हैं कि सीना परोना औरतों को आना चाहिए ताकि बाज़ार से कोई चीज़ खरीदने ना पड़े बच्चों के लिए। और अगर नहीं खुद आता तो फिर ऐसे औरतों को कोई कमेटी टाइप बनानी चाहिए कि जिन औरतों को आता है तो बेशक उनको पैसे दे दे उनसे मतलब जो है ना वो सिलवाने चाहिए। तो ये अगर आपस में आप लोग अरेंज कर ले तो कोई मुश्किल नहीं होगा कि अपने बच्चों के लिए जो कपड़े हैं वो खुद बाज़ार के बजाय आप खुद लोग सिलवाएं। मुझे खूब याद है कि मैं जर्मनी में था तो अरबों ने जब हमारे कपड़े देखे तो उनको बड़े पसंद आए, तो उनमें से जो उनके सदर जो सदर जलसा थे वो चूँकि करीब ही रहते थे तो उसने मुझे कहा कि आप मुझे ये शलवार कमीज दे दे ताकि मैं घर में इसकी पेमाइश वगैरह ले लूं तो मैं खुद सी लूंगा। तो उन्हें कपड़े अपने कपड़े खुद सी लिए थे, इन कपड़ों की पेमाइश लेकर जो है ना उस तरीके से वो उन्हें सीना उसको आता था तो उसने खुद सी लिए थे, क्योंकि वो कहते हैं इसमें मजहबी काम बहुत आसानी के साथ हो जाते हैं। और बात सही है। तो इस तरीके से इन चीज़ों के बारे में अगर अवेयरनेस हो तो मेरे ख्याल में काम इंसान खुद भी कर सकता है, औरतों को तो ये काम करना चाहिए। और खुद नहीं कर सकती तो जो कर सकती है उनके उनसे फिर करवाएं। हाँ अलबत्ता पैसे उनको ज़रूर दे, अगर बाज़ार में पैसा दे सकती है तो इनको क्यों नहीं दे सकती, आपका काम हो जाएगा उनका भी काम हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله، لا مسنا نزيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة سندك. السلام علیکم حضرت، آج کل کچھ ایسی کیفیت ہو گئی کہ گناہ گناہ نہیں لگتا اور دل برائی کی طرف مائل لگتا ہے، رہنمائی فرمائیں، آپ کی مجلس سننے کو دل نہیں کرتا، خوف کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، غصہ ہو کب کبھی ہوتی ہے، ہمت کر کے مجلس سنو تو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، ابھی بھی جسم کانپ رہا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہے اور سینے پہ بوجھ ہے آپ کی آواز سنتے ہوئے. جو بھی وجہ ہے اس کی طرف ہمیں فی الحال نہیں جانا چاہیے، البتہ ہمیں شریعت کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ شریعت سے تو کسی وقت بھی ہمیں آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے. گناہ کی طرف دل کا مائل ہونا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ نفس کے اندر یہ خواہشات رکھی گئی ہیں اور ہوگا اس طرح. البتہ بعض دفعہ ذکر کی وجہ سے عارضی طور پر وہ چیزیں دب جاتی ہیں تو آدمی سمجھتا ہے کہ جیسے میں پاک ہو گیا ہوں، لیکن وہ پھر دوبارہ عود کراتا ہے، مطلب جانا. تو اس وقت ہمت سے کام لینا چاہیے اور عقل کو استعمال کرنا چاہیے وقتی طور پہ، اور نفس کی جو تربیت ہے اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ نفس کنٹرول میں آ جائے. جب نفس کنٹرول میں آ جائے گا تو ماشاءاللہ چیزیں بدل جائیں گی. باقی یہ کہ شیطان اگر آپ کو مطلب جانا وہ مجلس سننے کو جو ہے نا وہ نہیں چھوڑتا، تو شیطان کی تو باتیں وہ لا تتبع خطوات الشیطان، شیطان کی نقش انہ لکم عدو مبین، وہ تو ہمارا کلا دشمن ہے، تو لہٰذا اس کی بات نہیں ماننی چاہیے اور ہمت کر کے مجلس سننا چاہیے. بے شک دل کا دھڑکن تیز ہو اس وقت استغفار کرنا چاہیے اور جو اس میں فائدہ ہو سکتا ہو اس فائدہ کو لینا چاہیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت والا، آپ کے خدمت اقدس میں سوال یہ عرض ہے کہ اسلام میں ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ گناہ سے نفرت کرو، گنہگار سے نفرت نہ کرو، اور کفر سے نفرت کرو، کافر سے نفرت نہ کرو. تو انسان کی محبت اور اپنی خود کم پستی یا کم ہمتی اور نہ اہلیت کا استحضار رکھنا تو اس سے سمجھ میں آیا. اور نیز حضرت مولانا اشرف علی تھانوی حکیم الامت نور اللہ مرقدہ نے ملفوظ میں فرمایا کہ میں تمام مسلمانوں سے اپنے آپ کو کم تر سمجھتا ہوں فی الحال، اور تمام کافروں سے کم تر سمجھتا ہوں فی المعال، انجام کے اعتبار سے. تو کیا یہ اسی روشنی میں ہے؟ ایک بات اس وجہ سے سوال کا عرض خدمت یہ ہے کہ کسی اور کی طرف تو نظر انشاءاللہ اگر نہیں کرتے ہیں تو وہ تو انسان جان سکتا ہے کہ اپنے گناہوں پر نظر رکھو، کسی اور کے گناہوں پر نظر کیوں ہو تمہاری. لیکن جس گناہ جو کہ اختیاری فعل ہے فاعل کا، اس سے اس کو جدا کرنا، کیونکہ سرزد تو اسی سے ہوا ہے، اور بالخصوص وہ گناہ جو ہمارے ذات کے اوپر اس نے کیا ہو، جیسے کہ ناحق تکلیف دینا، ظلم کرنا، جھوٹ بولنا، چوری کرنا، مار دھار کرنا، گالیاں دینا، غیبت کرنا، جو ہمارے خلاف کیا ہو بذات، تو اس سے بشری تقاضے کے بنا پر فائل سے بھی کراہت اور الجھن محسوس ہوتی ہے. تو اسے کس طریقے سے دور کیا جائے؟
ماشاءاللہ آپ کے سوال جو ہے نا، جو مجھے سمجھ آیا ہے وہ تو یہ ہے کہ ایک تو عام لوگوں کی بات ہے، ماں بائے جو گناہگار ماحول میں نظر آتے ہیں تو اس میں ہم لوگ یہ کریں کہ ان کی گناہوں کی سے تو نفرت کریں لیکن گناہگار سے نہ کریں، بلکہ اس کے ساتھ ہمدردی ہونا چاہیے. جیسے بیمار کے ساتھ ہمدردی ہوتی ہے اور بیماری سے آدمی بچتا ہے، تو وہ تو عام گناہگاروں کے ساتھ معاملہ ہے، کافروں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہونا چاہیے کہ آخر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت ہے، لہٰذا ان کے ساتھ بھی یہ بات ہونی چاہیے کہ ان تک دعوت صحیح انداز میں پہنچ جائے اور ان سے جو ہے نا نفرت کی بجائے ان کے بارے میں فکر کی جائے. تو وہ بات تو بالکل صحیح ہے، مطلب اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں البتہ اگر خود کسی کے ساتھ کچھ واقعہ ہو چکا ہو تو قرآن پاک میں اس کی نظیر بھی موجود ہے، اور وہ لا يحب الله جار بسوء الا من ظلم، یعنی کسی کے بارے میں کوئی بری بات یعنی کوئی سخت بات آدمی نہ کرے، مخالفت والی بات، مگر اس کے اوپر اگر ظلم کیا گیا تو پھر اس کو اجازت ہے، اس کو اجازت ہے. لہٰذا جس کے اوپر ظلم ہو چکا ہے تو ظلم کے خلاف بات کرنا اس پہ وہ نہیں ہے، اگر وہ اتنی ہی بات کرتا ہے، اگر حد سے زیادہ گزرتا ہے تو پھر اس کا ذمہ دار ہوگا. تو جتنا اس کے اوپر ظلم ہے تو اس کا بیان کرنا بھی جرم نہیں ہے، اور اس کے بارے میں مطلب یعنی کہ وہ بھی نہیں ہے. تو اس وجہ سے اس مسئلے میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، اجازت تو ہے. البتہ یہ بات ہے کہ عالی مرتبہ والی بات الگ ہے کہ انسان ان کے ساتھ بھی ایسا معاملہ نہ کرے، بلکہ ان کے ساتھ بھی شفقت والا معاملہ کرے، ان کے لیے بھی دعائیں کرے. ایسا لوگ کم از کم میں نے ایک دفعہ دیکھے ہیں، ہمارے ساتھ عنایت اللہ ریاض صاحب وہ حج پہ تھے، تو ان نے مجھے خود بتایا کہ جب پہلی دفعہ آئے تو ہم نے طواف کیے اپنے لیے بھی، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی، دوستوں کے لیے بھی، پھر ہم نے کہا اب کس کے لیے کریں، تو وہ چونکہ کے پی کے میں دشمنیاں تو ہوتی ہیں تو ہم نے اپنے دشمنوں کے لیے طواف کر لیے. جب ان کے لیے طواف کر دیا تو کہتے ہم سے پہلے وہ بات پہنچ گئی تھی ان کے دشمنوں کے پاس، کوئی رشتہ دار میں کوئی گاؤں کے لوگ ہوں گے ان کے ذریعے سے پہنچ گئی ہوگی. تو کہتے جس وقت ہم واپس پہنچے تو جو استقبال کرنے والے تھے ان میں وہ دشمن بھی آئے تھے، وہ آئے تھے اور انہوں نے ہمارے سامنے سارا کچھ رکھ دیا، کہتے بس ہم دشمنی ختم کرتے ہیں، آپ نے دشمنی ہمارے میں لی تو آپ کر لیے تو آپ کے ساتھ ہم دشمنی کیسے کرتے ہیں، تو اس طرح ہماری دشمنی ختم ہو گئی. تو یہ ایک ایکسٹرا واقعہ ہے، لیکن بہرحال یہ سب کے اوپر ڈیو نہیں ہے، یہ ایک ایکسٹرا میرٹ ہے. لہٰذا اگر کسی کے پاس کسی کا ہے تو ہے، تو شریعت نے جتنی گنجائش دی ہے اس سے فائدہ اٹھا ہے، اسے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی آگے بڑھنا چاہے تو اس کا راستہ نہیں روکا جا سکتا.
اخیر میں بات رہنمائی کے لیے عرض ہے کہ حضرت وحشی، سیدنا وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان قبول کرنے سے پہلے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان سے سرفراز فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں بھی کی، اور روایت میں عطا فرمایا کہ البتہ انہیں نصیحت کر دے کہ میرے سامنے نہ آیا کرے، آگ کے سامنے، تو مفہوم حدیث. تو بظاہر معلوم ہوا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشری تقاضے کی بنا پر جو تکلیف ان کو پہنچے گی، کیونکہ فاعل اور اس کے اس فعل سے اس کو الگ نہیں جانا، یہ انہیں گزشتہ دو سوالات کے ضمن میں یہ عرض.
یہ ایک بات عرض کروں کہ حضرت ثانی علیہ وسلم نے اس واقعے کو جب بیان فرمایا تو اس میں ایک بڑی بڑے علمی نقطہ بھی ساتھ بیان فرمایا، فرمایا کوئی یہ نہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، کوئی یہ نہ سمجھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو برداشت کے پہاڑ تھے. ہاں جی، یہ ان کے ساتھ مہربانی تھی، کیونکہ جیسے شیخ کی قدورت مرید کو نقصان پہنچاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبی قدورت جو ہے نا ان کو نقصان پہنچا سکتی تھی، تو اس کو بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے نہ ہو. یہ نہیں کہ اپنے آپ کو تکلیف سے بچانے کے لیے کیا ہے، اس کے لیے وہ مسئلہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہاڑ تھے، مطلب جو ہے نا وہ مسئلہ نہیں تھا، لیکن یہ صرف اس کو بچانے کے لیے کیا تھا. اس وجہ سے یہ والی بات ہے کہ یہ تو آپ ذرا تھوڑا سا دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعوت دینے میں کتنی کوشش کی، اور پھر اللہ پاک کی مہربانی دیکھے کہ اللہ پاک نے کیا ان کے لیے فرمایا، اور پھر اس کے بعد جو فرمایا، تو یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اس سے شیخ اور مرید کا جو کنسیپٹ ہے وہ اس کے اوپر بھی روشنی پڑتی ہے کہ شیخ کی قدورت سے بچنا چاہیے اور شیخ کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے.
اس واقعہ کی رہنمائی اگر حضرت والا فرما دے، مزید نہیں عرض کر سکتے کچھ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں الفاظ بھی صحیح.
اچھا، میرے خیال میں بات تو ہو گئی. الحمدللہ یہ تو پورا ہو گیا، البتہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں رہتی ہیں دوسرے والے میں، ٹائم بھی بہت تھوڑا ہے. اب کیا کریں. بعض لوگ میں سمجھاتا ہوں کہ یہ دوسرے نمبر پہ نہ بھیجا کرے میرے ڈائریکٹ نمبر پر, لیکن اس کے باوجود پھر بھی بھیج دیتے ہیں. سر کیا تعویذ پہننے الاؤ ہے یا بدعت تو نہیں ہے؟ اس بدعت قبول نہیں ہوتی اس کی پہن. وہ اصل میں وہ ایک اور چیز ہے, وہ شرکیہ چیزیں ہوتی ہیں. مطلب جو ہے نا وہ جس کی ممانعت ہے. تعویذ جو ہے نا مطلب وہ ثابت ہے, لیکن جن لوگوں نے تعویذ کو وہ مقام دیا کہ ان کو باقی چیزوں سے آگے رکھا ہے اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ اتنا بھی نہیں ہے کہ باقی چیزوں سے ان کو آگے رکھا جائے. ہاں مطلب یہ کہ تعویذ پہننے میں کوئی وہ نہیں ہے, اگر کسی نے پہنا ہو تو اس سے وہ نمازیں خراب نہیں ہوتی. اس کی وجہ ہے کہ وہ شرک یا تعویذ نہیں ہے, بلکہ اس میں اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہی مانگا جاتا ہے. مطلب اس وجہ سے اس کے اوپر اثر نہیں پڑتا. آ گیا.
علیکم حضرت, میں عثمان بات کر رہا ہوں کویت سے. حضرت میرا دو سوال ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا نفس کو بھوکا رکھنے سے نفس پہ قابو پا سکتا ہے؟ یعنی اگر آپ تین ٹائم کھانا کھاتے ہو اور آپ ایک ٹائم چھوڑ کے, دو ٹائم چھوڑ کے, یعنی آپ رات کا کھانا چھوڑ دیں, تو اس سے کیا نفس پہ قابو پا سکتا ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اچھا کھانا, یہ بھی کیا نفس کی خواہش میں آتا ہے؟ یعنی گھر کا کھانا چھوڑ کے آپ کئی باہر اچھا کھانا کھاتے ہو.
اصل میں اصولی بات کا جواب تو میں دے سکتا ہوں, باقی تفصیلی جواب تو اس وقت نہیں دیا جا سکتا. اصولی بات یہ ہے کہ نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ مجاہدات ہوتے ہیں, اور وہ مجاہدات مختلف صورتوں میں ہوتے ہیں. مثلا کھانے پینے پہ کچھ کنٹرول, یہ بھی ایک ذریعہ ہے. سونے پہ کنٹرول, یہ بھی ایک ذریعہ ہے. بات چیت پہ کنٹرول, یہ بھی ایک ذریعہ ہے. اور لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے پہ کنٹرول, یہ بھی ایک ذریعہ ہے. نظروں کی حفاظت کے لیے اپنے مجاہدات ہیں. لیکن یہ سارے کچھ شیخ کے اس کے پرسکرپشن کے مطابق ہو. دوائیوں کے اوپر لکھا جاتا ہے کہ ان دوائیوں کو بچوں تک نہ پہنچنے دیں, ایک تو یہ لکھا ہوتا ہے. دوسرے کہ ایز پرسکرائبڈ بائی دی فزیشین, جیسے کہ ڈاکٹر نے اس کو بتایا ہو. تو جو دوائیوں کے لیے مطلب وہ ہے جس کو کہتے ہیں یعنی بتایا جاتا ہے, یہی چیز ان چیزوں کے لیے بھی ہے. تو اپنے مرضی کے مطابق کوئی مجاہدہ نہ کیا جائے, نہ کوئی دوائی استعمال کی جائے, نہ کوئی ذکر علاجی کیا جائے. ہاں البتہ جب ڈاکٹر کہہ دے تو پھر اس میں یہ کوئی بات نہ کرنی چاہیے. جس طریقے سے بتایا گیا ہے اسی طریقے سے کرنا چاہیے. تو اس کے لیے آپ ہماری کتاب فہم التصوف اگر پڑھ لیں تو شاید آپ کو زیادہ تفصیلات کا پتہ چل جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد. یہ ریکارڈ ہو گیا نا؟ بس ٹھیک ہے, یہاں کچھ مسئلہ ہو گیا تھا.